باب إيقاع الطلاق. الطلاق على ضربين صريح وكناية، فالصريح قوله أنت طالق ومطلقة وطلقتك، فهذا يقع به الطلاق الرجعي لأن هذه الألفاظ تستعمل في الطلاق ولا تستعمل في غيره، فكان صريحا، وأنه يعقب الرجعة بالنص ولا يفتقر إلى النية. گزشتہ سبق میں آپ کو صاحب ہدایہ نے بتلایا کہ وہ عورت جس کو حیض نہیں آتا، یعنی صغیرہ ہے یا آیسہ ہے، اور صغیرہ بھی ایسی ہے کہ جس کے ساتھ خاوند صحبت کر چکا ہے، یعنی قریب البلوغ ہے اور خاوند اس کے ساتھ صحبت کر چکا ہے، ان کو اگر خاوند طلاق حسن دینا چاہتا ہے تو ان کو صحبت کے فوراً بعد بھی طلاق دے سکتا ہے، اور پھر ایک مہینے کے فصل کے بعد دوسری طلاق دے دے گا، اور پھر ایک مہینے کے فصل کے بعد تیسری طلاق دے دے گا. جیسے وہ عورت جس کو حیض آتے ہیں اس کو طلاق حسن دینے کا کیا طریقہ تھا کہ اس کو ایسے طہر میں طلاق دے جس میں اس کے ساتھ صحبت نہ کی ہو، اور نیز طلاق بھی رجعی دے، اور پھر اگلے طہر میں دوسری طلاق دے، اور اس سے اگلے طہر میں تیسری طلاق دے. تو جیسے وہاں پر ہر دو طلاقوں کے درمیان حیض کا فصل کیا جاتا تھا، تو یہاں پر بھی ہر دو طلاقوں کے درمیان ایک مہینے کا فصل کیا جائے گا، کیونکہ وہ عورتیں جن کو حیض نہیں آتا ان کے حق میں مہینہ جو ہے وہ حیض کے قائم مقام ہے. البتہ وہ جس کو حیض آتا ہے اس کو جب پہلی طلاق دے تو صحبت اور پہلی طلاق کے درمیان ایک حیض کا فصل ضروری تھا، ایک حیض کا فصل ضروری تھا. وجہ یہ کیونکہ وہاں پر جب صحبت کر لے گا تو خاوند کی خواہش پوری ہو گئی، جس کی وجہ سے عارضی عدم رغبت آ گئی، تو کہیں اس عارضی عدم رغبت کی وجہ سے خاوند طلاق نہ دے دے، اس لیے شریعت نے اسے منع کیا ہے. تو جب اگلا نیا طہر آئے گا تو یہ رغبت کے نیا ہونے کا زمانہ ہے، تو اس میں پھر خاوند پہلی طلاق دے گا بھائی. اور جبکہ یہ عورتیں جن کو حیض نہیں آتا، چاہے یہ صغیرہ ہے، صغیرہ مدخول بہا ہے، یا آئسہ ہے، یا حاملہ ہے، ان کے اندر صحبت کے فوراً بعد بھی طلاق دے سکتا ہے. وجہ یہ کہ ان کے اندر جو صحبت ہوگی وہ غیر معلق ہوگی، یعنی صحبت کی وجہ سے علوق نہیں ہوگا، یعنی حمل نہیں ٹھہرے گا، اور خاوند جو ہے ایسی وتی کے اندر راغب ہوگا جس کی وجہ سے علوق نہ ہو بھائی، بچے کی پرورش کی مشقتوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. تو لہذا اگر دیکھا جائے تو ایک اعتبار سے ان میں رغبت کم ہو رہی ہے کہ صحبت کی ہے ابھی ابھی، اور دوسرے اعتبار سے دیکھا جائے تو رغبت بڑھ رہی ہے بہی اعتبار کی ان میں وتی جو ہے وہ غیر معلق ہے بھائی، تو اس لیے ان کو فوراً بھی طلاق دے سکتا ہے. جبکہ امام محمد رحم اللہ وہ حاملہ کے مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حاملہ کو طلاق حسن نہیں دے سکتا، وہ طلاق بدعت ہو جائے گی، بلکہ حاملہ کو صرف طلاق احسن دے سکتا ہے، یعنی ایک ہی طلاق پر اکتفا کرے گا خاوند اور پھر عدت کو گزرنے دے گا، یعنی وضع حمل تک. وہ اس کو قیاس کرتے ہیں اس عورت پر جس کا طہر لمبا ہو گیا ہو، اور جس عورت کا طہر لمبا ہو گیا ہے اس کے اندر تو بال اتفاق جو ہے مہینے جو ہیں وہ فصول عدت نہیں ہیں، وہ عدت کی فصلیں نہیں. میں نے بتایا عدت کی فصلوں سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کے ساتھ عدت کو شمار کیا جاتا ہے، اور وہ حائضہ کے اندر حیض ہے اور آئسہ وغیرہ کے اندر وہ مہینے ہیں. لیکن یہاں پر جو حاملہ ہے یا اسی طرح وہ عورت جس کا طہر لمبا ہو گیا ہے، ان میں تو بال اتفاق جو ہے عدت کی فصلیں وہ مہینہ نہیں ہے. تو وہ عورت جس کا طہر لمبا ہو گیا ہو، پانچ چھ مہینے گزر گئے یا سال گزر گیا ہے، तो वहां देखो तोहर लंबा हो गया, लेकिन बिल इत्तेफाक यहां पर महीनों का एतबार नहीं किया जाएगा, बल्कि अगले तोहर ही का इंतजार किया जाएगा, फिर ही वो तलाक सुन्नत उसको दे सकता है। भाई तलाक सुन्नत यानी तलाक हसन। तो जैसे ये औरत जिसका तोहर लंबा हो गया है, इसके हक में महीने जो हैं वो इद्दत की फसलें नहीं, इसी तरह हामिला के हक में भी जो महीने हैं वो इद्दत की फसलें नहीं। हालांकि इद्दत की फसलों के साथ तो तफरीक जरूरी थी हर दो तलाकों के दरमियान, तो लिहाजा यहां चूंकि इद्दत की फसलें ही नहीं है हामिला में, लिहाजा यहां पर तलाक हसन देने की कोई सूरत नहीं है। जबकि शेखैन रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि हामिला के अंदर भी एक महीने के फसल के साथ तीनों तलाकें दे सकता है। वजह यह कि यह जो एक महीना है फितरत सलीमा पर इसमें रगबत नहीं हो जाती है, लिहाजा ये एक महीना गुजर गया और रगबत नहीं हो गई, फिर भी खावंद तलाक पर इकदाम करना चाहता है, तो यह अलामत है और दलील है कि खावंद को तलाक देने की हाजत है, तो इस हाजत की वजह से उसको तलाक की इजाजत होगी और इस तरह वो तीन तलाकें हामिला को भी दे सकता है। जबकि वो औरत जिसका तोहर लंबा हो गया हो, कहते हैं आप हामिला को उस पर कयास नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि वहां पर तो किसी भी वक्त दोबारा हैज आ सकता है और फिर नया तोहर शुरू हो सकता है, लेकिन हामिला के अंदर तो ऐसी कोई उम्मीद ही नहीं है, लिहाजा आप एक को दूसरी पर कयास नहीं कर सकते, दोनों में फर्क है भाई। उसके बाद फिर साहिब हिदायत ने आपको यह मसला बतलाया था कि हैज के अंदर तलाक देने से भी शरीयत ने मना किया है, और हैज के अंदर अगर कोई तलाक दे दे तो उस पर वाजिब है कि वो रुजू करे, और फिर उसके बाद जो तोहर आए उसमें भी तलाक न दे, बल्कि अगला हैज जब गुजर जाए तो फिर उसके बाद अगला तोहर जो आए तो उसमें फिर वो तलाक सुन्नत तरीके पर उसको दे सकता है। उसके बाद फिर साहिब हिदायत ने यह मसला जिक्र फरमाया कि जिस शख्स ने अपनी बीवी से कहा जो जवातुल हियज है और खावन उसके साथ सोहबत भी कर चुका है कि अंति तालिकुन सलासन लि सुन्नती, तो कहते हैं अगर इसके अंदर उसने कोई नियत नहीं की तो सुन्नत के मुताबिक हर तोहर में एक एक तलाक वाकई होती चली जाएगी, और अगर उसने हर महीने के आगाज की नियत की है तो उसकी नियत के मुताबिक हर महीने के आगाज में तलाक वाकई होगी भाई, और अगर उसने तीनों इकट्ठी देने की नियत की है तो तीन इकट्ठी भी वाकई हो जाएंगी, इसलिए क्योंकि तीन इकट्ठी तलाकें ये उसके कलाम का मुहतमल है, क्योंकि उसने क्या कहा था अंति तालिकुन सलासन ले सुन्नती, तवज्जो है, सिर्फ सुन्नत की वजह से जरा शुबा पड़ता है कि सुन्नत तरीका तो यह नहीं है कि इकट्ठी तलाकें दी जाएं, तो उसका जवाब दिया था कि भाई सुन्नत से यहां माना यह कर लेंगे जो सुन्नत से साबित है कि तुझे तीन तलाकें इकट्ठी हैं जो सुन्नत से साबित हैं, और इंद अल अहनाफ भी इकट्ठी तीन तलाकें दी जाएं तो वो वाकई हो जाती हैं, जैसे कि हदीस रुकाना मैंने जिक्र की थी, उससे मालूम होता है हुजूर ने एक इरादे पर कसम दी, मालूम हुआ एक मजलिस में तीन हो सकती हैं, इसीलिए तो हुजूर अलैहिस्सलाम कसम दे रहे हैं उनको एक तलाक पर, अगर एक मजलिस में तीन वाकई न हो सकती तो फिर कसम खिलाने का कोई मकसद नहीं बनता, बल्कि फिर तो एक के इरादे की जरूरत ही नहीं है, जितनी भी दे दो वाकई एक ही होनी है भाई, बात समझ में आ गई। और अगर यही तलाक दी अंति तालिकुन सलासन लि सुन्नती, और वो जो औरत है वो सगीरा मदखूल बिहा है या आयसा है, तो फिर इस सूरत के अंदर एक तलाक तो उसी वक्त हो जाएगी और अगली तलाकें एक एक महीने के वक्फे से वाकई हो जाएंगी, और अगर इनमें भी तीन की नियत की तो इकट्ठी तीन वाकई हो जाएंगी। लेकिन इसके बरखिलाफ अगर उसने सलासन का लफ्ज जिक्र नहीं किया, सिर्फ कहा अंति तालिकुन लि सुन्नती, अंति तालिकुन ले सुन्नती, और अब वो तीन की नियत करता है, तो आपको बतलाया कि अब भी उसकी नियत सही है, इसलिए क्योंकि सुन्नत तलाक जो है यानी तलाक हसन उसमें तीन तलाकें होती हैं भाई, और इसने भी क्या कहा है ले सुन्नती आई वक्त सुन्नती, ये लाम किस लिए है, वक्त के लिए है, तो देखो लफ्ज क्या बोले अंति तालिकुन ले सुन्नती आई वक्त सुन्नती, और नियत किसकी है तीन तलाक की है, तो गोया वो वक्त में तामीन कर रहा है, वक्त सुन्नत में तामीन कर रहा है, हर सुन्नत के वक्त में तुम्हें तलाक है, तो हर तोहर में एक एक तलाक होती चली जाएगी, और अगर वो सगीरा या आयसा है तो हर एक महीने के बाद एक एक तलाक होती चली जाएगी, पहली तलाक फौरन होगी और अगली तलाकें एक एक महीने के वक्फे से होती चली जाएंगी। लेकिन अगर उसने अंति तालिकुन लिस सुन्नति सलासन का लफ्ज नहीं बोला और वो तीन इकट्ठी वाके करने की नीयत करता है तो फिर तीन इकट्ठी वाके नहीं होंगी, इसलिए क्योंकि लिस सुन्नत का क्या माना था, वक्त सुन्नति, और जब उसने तीन इकट्ठी की नीयत की है तो इस वक्त की तामीम को बातिल कर दिया
जी।
पहले क्या था, उसने तीन की नीयत की थी तो इस गोया इस वक्त में उसने तामीम की नीयत की थी, तो जब भी सुन्नत वक्त आएगा तलाक वाके होती चली जाएगी। और अब उसने खुद तीन इकट्ठी का इरादा किया है तो गोया उसने वक्त के अंदर तामीम को बातिल कर दिया, और जब वक्त के अंदर तामीम बातिल हुई तो उसके अंदर जो वाके होने वाली तलाक थी उसके अंदर भी तामीम बातिल हो गई, अब एक ही तलाक वाके होगी। भाई पिछले मसले में देखो अंति तालिकुन सलासन लि सुन्नति, उसमें सलासन का लफ्ज खुद मौजूद था, वहां अगर वो तीन की इकट्ठी नियत करता था तो भी लिस सुन्नत की तामीम तो अगरचे बातिल हो गई थी लेकिन सलासन का लफ्ज खुद मौजूद था इसलिए तीन तलाकें हो जाती थी। लेकिन यहां पर तो सलासन का लफ्ज नहीं है, इसी लिस सुन्नत के अंदर हम तामीम पैदा कर देंगे, क्या कर देंगे, आंति तालिकुन लि सुन्नति, तुम्हें सुन्नत तरीके पर तलाक है और नियत कितने की कर रहा है, तीन तलाकों की, और सुन्नत तरीका क्या है तलाक हसन का, हर ऐसा तोहर जिसमें सोहबत न की हो उसमें तलाक दी जाती है। तो लिहाजा गोया वो तीन की नियत करके इस लि सुन्नत यानी वक्त सुन्नत के अंदर तामीम कर रहा है, और जब वक्त के अंदर तामीम आएगी तो वक्त के अंदर जो तलाक वाके हो रही थी उसमें भी तामीम आती चली जाएगी और तीन तलाकें पूरी हो जाएंगी। लेकिन जब उसने तीन इकट्ठी वाके करने का इरादा किया तो उसने वक्त के अंदर तामीम को बातिल कर दिया, वक्त था जर्फ और तलाक थी उसके अंदर मजरूफ, तो जब जर्फ में तामीम खत्म तो मजरूफ की तामीम भी खत्म, क्योंकि मजरूफ में तो तामीम आ ही जर्फ की तामीम की वजह से रही थी, तो लिहाजा इसलिए एक ही तलाक वाके होगी सूरत में। बात समझ में आ गई, इकट्ठी यानी तीन नहीं हो सकती। और फिर साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि आकिल बालिग की तलाक वाके हो जाती है जबकि बच्चे मजनून और सोए हुए की तलाक वाके नहीं होती। इसी तरह जिस शख्स पर जबरदस्ती की जाए, जबर किया जाए, कोई शख्स तलवार या बंदूक निकालता है कि भाई तुम अपनी बीवी को तलाक दो वरना तुम्हें कत्ल करता हूं या तुम्हें तुम्हारे आजा काटता हूं, शदीद जख्मी करता हूं, तो इस सूरत में अगर यह तलाक दे देता है तो फिर इंदल अहनाफ तलाक वाके हो जाएगी। जबकि इमाम शाफिर हमला वगैरह फरमाते हैं कि नहीं, जब इसको मजबूर कर दिया गया तो इसका इख्तियार खत्म हुआ, और शरई तसरुफात तो अपने इख्तियार से होते हैं, बगैर इख्तियार के नहीं होते। हम जवाब देते हैं कि भाई यहां पर उसके सामने दो शर सामने आए थे, एक तरफ उसकी जान जा रही थी तो दूसरी तरफ बीवी जा रही थी, और उसने अपने इख्तियार से हल्के शर का इंतखाब किया तो मालूम हुआ इख्तियार मौजूद था और इरादा भी मौजूद था, तो अपने इख्तियार और अपने इरादे से बीवी को तलाक दे रहा है लिहाजा ये तलाक हो जाएगी। और नीज हम इस मुकरह को ताए पर कयास करते हैं, यानी हम मुकरह को ताए पर कयास करते हैं, मुकरह वो जिसके साथ जबरदस्ती की गई है, और ताए का असल माना क्या मैंने बताया, फरमा बरदार भाई, तो यहां मुराद है जो अपनी मर्जी से तलाक दे रहा हो, तो हम इस मुकरह को ताए पर कयास करते हैं। जैसे अपनी मर्जी से जो तलाक देने वाला है उसको शरीयत ने हाजत की वजह से तलाक की इजाजत दी है, वो औरत से छुटकारा पाना चाहता है, वरना तो तलाक तो असल में ममनू चीजों में से है लेकिन उसकी हाजत की वजह से शरीयत ने उसको इजाजत दी है। इसी तरह यहां पर भी मुकरह जो है उसकी हाजत है, वो अपनी जान छुड़ाना चाहता है, तो जैसे ताए को हाजत की वजह से तलाक की इजाजत है तो मुकरह को भी अपनी छुटकारे की हाजत की वजह से तलाक की इजाजत होगी। बात समझ में आ गई भाई। और फिर साहिब हिदाया ने आपको यह भी बतलाया कि मदहोश की तलाक भी वाके हो जाएगी, मदहोश की तलाक भी वाके हो जाएगी, और याद रखना यहां मदहोश से मुराद वो शख्स है जो इंतहा, जो नशे में इंतहा को पहुंचा हुआ है, हत्ता कि वो जमीन और आसमान के दरमियान भी फर्क नहीं कर सकता। तो जब ये मदहोश जिसको जमीन और आसमान का ही पता नहीं चल रहा, बतौर सजा के जब इसकी तलाक वाके हो जाती है तो इससे जो कम नशे वाला होगा, वो शख्स जो कम नशे में है, उसकी तलाक तो बतरीके औला वाके हो जाएगी। भाई बात समझ में आ गई। नीज इन्होंने आपको बतलाया था कि जिस शख्स की अकल जायल हो जाए उसकी तलाक वाके नहीं होती, लेकिन ये जो मदहोश है इसने नशा किया है तो बतौरे डांट के इसकी अकल पर बाकी होने का हुक्म लगाया जाएगा और इसकी तलाक वाके होगी। तो ये बतौरे डांट के है, यानी यूं कहो बतौरे सजा के है भाई, बतौरे सजा के उसकी तलाक वाके होगी भाई। और आखिर में आपको साहिब हिदाया ने बतलाया कि तलाकों का ताल्लुक हमारे नजदीक औरत से है। औरत अगर बांधी है तो खावन दो तलाकें दे सकता है ज्यादा से ज्यादा, और अगर औरत आजाद है तो खावन तीन तलाकें दे सकता है। जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक तलाक का ताल्लुक खावन से है। खावन आजाद हो तो वो तीन तलाकों का मालिक होता है, और अगर वो गुलाम हो तो वो दो तलाकों का मालिक होता है भाई। और नीज अगर गुलाम अपने आका की इजाजत से निकाह कर ले तो तलाक का इख्तियार गुलाम को होगा, इंदल अहनाफ, उसके आका को तलाक का इख्तियार नहीं है, क्योंकि मिलके निकाह गुलाम को हासिल हुई है तो उस मिलके निकाह को साकित करना भी किसके इख्तियार में होगा, गुलाम के इख्तियार में होगा। बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। बाबु इकाई तलाक, ये बाब है तलाक वाके करने के बयान में, कि तलाक के वाके करने से मुतालिक जो अहकाम है कि किन लफ्जों से तलाक वाके होगी। खावन मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज जिक्र करता है तो उसमें क्या हुक्म होगा वो अब बयान फरमाएंगे। तो कहते हैं अब तलाक वाला जरबैनी के तलाक जो है दो किस्म पर है, सरीह व किनायतुन। एक सरीह है और एक किनाया। मैंने आपको बतलाया था सरीह यानी साफ लफ्जों में तलाक देना जिसमें और किसी माना का इस्तेमाल ना हो। खावंद अपनी बीवी से कहता है मैं तुझे तलाक देता हूं। देखो अब इसका और कोई माना नहीं है, इस कलाम का एक ही माना है कि खावंद बीवी को तलाक दे रहा है। और बाज़ औक़ात खावंद गोलमोल से अल्फाज इस्तेमाल करता है, मसलन बीवी से कहता है तू जुदा है, तो जुदा है। अब याद रखो तू जुदा है इसके अंदर तलाक वाला माना भी हो सकता है कि तू जुदा है मुझसे क्योंकि मैं तुझे तलाक दे चुका हूं, और इसके अंदर और माना भी हो सकता है कि तू और औरतों से जुदा है हुस्न जमाल के अंदर या अपनी और सिफात के अंदर तू और औरतों से जुदा है। तो किनाये के अंदर तलाक वाले माना का भी इस्तेमाल होता है और दूसरे माना का भी इस्तेमाल होता है, जबकि सरीह के अंदर और किसी माना का इस्तेमाल नहीं होता। लिहाजा याद रखना जब सरीह लफ्ज इस्तेमाल करेगा तलाक में तो उसमें नीयत की कोई हाजत नहीं। खावन ने अपनी बीवी से कहा अंति तालिकुन, तुझे तलाक है, बस तलाक फौरन वाके हो गई। अब खावन से यह पूछने की जरूरत नहीं है कि आपकी नीयत क्या थी। भाई नीयत तो वहां पूछेंगे जहां और मानी का भी इहतेमाल हो, यहां अंति तालिकुन में तो और किसी माना का इहतेमाल नहीं। लिहाजा याद रखना सरीह नीयत का मोहताज नहीं, सरीह तलाक नीयत की मोहताज नहीं, फौरन तलाक वाके हो जाएगी, वहां नीयत पूछने की कोई जरूरत नहीं। और नीज यह भी याद रखना सरीह लफ्ज से तलाक रजई वाके होगी भाई, तलाक रजई। जबकि इसके मुकाबले में किनाया है, किनाये के अंदर तो और मानी का भी इहतेमाल होता है, लिहाजा वहां कोई दलील चाहिए जिससे पता चले कि तलाक का इरादा था, और वो दलील उमूमन उसकी नीयत होगी। उससे पूछा जाएगा भाई कि तुमने कहा है तुम मुझसे जुदा है, तुम्हारी नीयत क्या थी। और अगर कोई और दलील मौजूद है, कोई और करीना मौजूद है जो बतला रहा है कि इसकी तलाक ही की नीयत थी, तो फिर वहां उसे नीयत भी नहीं पूछी जाएगी। मसलन मियां बीवी के दरमियान मुजाकरा तलाक हो रहा था, तलाक पर बहस हो रही थी, बीवी कहती थी मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती मुझे तलाक दो, और खावंद उससे बहस वगैरह कर रहा है। इस बहस के दौरान खावंद उसको कहता है तू जुदा है, अब खावंद से नियत पूछने की जरूरत नहीं है, बात ही तलाक की चल रही है और खावंद क्या कह रहा है तू जुदा है, मालूम हो यहां तलाक ही का इरादा है। किसका इरादा है? तलाक ही का इरादा है। तो जो किनाया होता है उसके लिए कोई दलील चाहिए कि इससे तलाक का इरादा किया गया था, तो दलील क्या होगी, या तो उस आदमी की नीयत होगी या कोई और दलील, मसलन मुजाकरा तलाक वगैरह हम हो रहा था, तो फिर इस सूरत में इस किनाए के जरिए भी तलाक हो जाएगी। और मैंने आपको बतलाया था, आगे साहिब हिदायत भी जिक्र करेंगे किनाए के अल्फाज भाई मुख्तलिफ सूरतें के खावन ने यह लफ्ज इस्तेमाल किया या ये लफ्ज इस्तेमाल किया तो फिर क्या हुक्म है। याद रखो किनाए के अल्फाज के अंदर सिर्फ तीन अल्फाज ऐसे हैं जिनसे तलाक रजई होती है, तीन अल्फाज हैं, आगे साहिब हिदायत आपको बतलाएंगे, बाकी जितने किनायात हैं उनसे तलाक बाइन होगी। तो कहते हैं अब तलाक अला जरबैनी, तलाक दो किस्म पर है, सरीह व किनायतुन, एक सरीह है और एक किनाया है। फसरीह कौलुहु, तो सरीह जो है खावन का ये कौल है, अंति तालिकुन व मुतल्लकतुन व तल्लकतु की, ये अल्फाज हैं। अंति तालिकुन मसलन खावन बीबी से क्या कहता है, अंति तालिकुन, तो ये सरीह है और इसमें नीयत पूछने की भी जरूरत नहीं, और नीज इसे कौन सी तलाक होगी, तलाक रजई। या अंति मुतल्लकतुन, ये मुतल्लका के साथ भी अंति को जोड़ें, अंति मुतल्लकतुन, तो इस सूरत में भी ये सरीह लफ्ज है, एक तलाक रजई होगी। या तल्लकतु की, फेल इस्तेमाल करता है खावन, तल्लकतु की, मैंने तुझे तलाक दे दी, तो इस सूरत में भी एक तलाक होगी और रजई होगी। तो कहते हैं फसरीह कौलुहू, तो सरीह जो है खावन का ये कौल है, अंति तालिकुन व मुतल्लकतुन व तल्लकतु की, तो ये सारे सरीह हैं। फहादा यकाउ बिही तलाकुर रजईयु, तो ये जो है इनके जरिए तलाक रजई वाकई होगी। लिअन्नहादिहिल अल्फाज़ तुस्तामलु फित तलाकी, इसलिए क्योंकि ये वाले अल्फाज तलाक में इस्तेमाल किए जाते हैं। वला तुस्तामलु फी गैरिही, और उर्फ में या और चीजों के अंदर इस्तेमाल नहीं होते। फकान सरीहन, तो ये सरीह हैं। व अन्नहु युअक्किबुर रजअत बिन्नस्सी, और ये जो सरीह तलाक है, युअक्किबुर रजअता, ये अपने पीछे रुजू को लाती है, बिन नस्सी, नस की वजह से, नस से साबित है कि सरीह तलाक अपने बाद रुजू को लाती है, उसके बाद रुजू हो सकता है, किससे साबित है, नस से। कैसे, नस क्या है, ये मेरे हाशिए में दी हुई है आयत, व बुउलतुहुन्ना अहक्कु बिरद्दिहिन्ना, व बुउलतुहुन्ना, बुउल जमा है बाल की, और याद रखो बाल खावंद को कहते हैं। तो कहते हैं व बुउलतुहुन्ना, और इन औरतों के खावंद जो हैं, अहक, वो ज्यादा लायक हैं, बिरद्दिहिन्ना, इनके लौटाने के, इन औरतों के खावंद ज्यादा लायक हैं इन औरतों के लौटाने के, कि वो इनको लौटा सकते हैं, तलाक के बाद भी लौटा सकते हैं। और नीज नीज खावंद तलाक दे चुका है, फिर भी कुरान में कहा जा रहा है बुउलतुहुन्ना, इनके खावंद, फिर भी कहा जा रहा है इनके खावंद, मालूम हो अभी भी निकाह मौजूद है, अगर निकाह मौजूद ना होता फिर तो ये अब इनके खावंद नहीं थे, ये तो तलाक दे चुके थे जी। तो तलाक के बावजूद इन पर खावंद के लफ्ज का इतलाक किया जा रहा है, मालूम हुआ निकाह अभी टूटा नहीं, वो रुजू कर सकता है। तो इस नस से पता चला कि तलाक सरीह के बाद खावंद रुजू कर सकता है। तो कहते हैं वह अन्नहु युअक्किबुर रजअत बिन्नस्सी, और यह तलाक सरीह जो है अपने पीछे रुजू को लाती है नस की वजह से। वला यफ्तकिरु इलन नीयति, और यह तलाक सरीह जो है नीयत की मोहताज नहीं होती। लिअन्नहु सरीहुन फीही, इसलिए क्योंकि यह सरीह है तलाक में, यह लफ्ज क्या है, सरीह है तलाक में। लिगलबति लिस्तेमाल, गलबा इस्तेमाल से भाई, गलबा इस्तेमाल से, यानी उर्फ के अंदर यह तलाक का लफ्ज गालिबन और अक्सर इस औरत को तलाक देने के लिए ही इस्तेमाल होता है। तो गलबा इस्तेमाल से क्या मुराद है, उर्फ का गलबा इस्तेमाल, यानी आम लोग तलाक का लफ्ज तलाक ही में इस्तेमाल करते हैं। याद रखो अरबी जुबान में तलाक का लफ्ज उमून तलाक के लिए ही इस्तेमाल होता है, कभी कभार और चीजों के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है लेकिन वो बहुत कम है। आम तौर पर ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, तलाक के लिए ही भाई, बिलखसूस जब औरत की बात की जा रही है तो वहां ये कैद निकाह को उठाने वाली चीज जो है तलाक, उसी का इरादा होता है। बाज औकात कैद या बंद से आजादी के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, बात समझ में आ गई, लेकिन वो बहुत कम है, ज्यादातर ये औरत को तलाक देने के लिए ही ये तलाक का लफ्ज इस्तेमाल होता है। ये है गलबा इस्तेमाल, यहां साहिब हिदाया पर एतराज होता है कि पिछली सतर में आपने कहा वला तुस्तामलु फी गैरिही, ये तलाक का लफ्ज तलाक के गैर में इस्तेमाल ही नहीं होता, और आप कह रहे हैं गलबा इस्तेमाल है। भाई गलबा इस्तेमाल तो बतला रहा है कि और जगह भी इस्तेमाल होता है लेकिन बहुत कम है, और ऊपर वाला लफ्ज आपका बतला रहा है ला तुस्तामल फी गैरिही, गैर में इस्तेमाल बिल्कुल होता ही नहीं। ये तो आपके अपने कलाम में तनाकुज आ गया, एक जगह कह रहे हैं दूसरी जगह बिल्कुल इस्तेमाल होता ही नहीं और दूसरी जगह कह रहे हैं कुछ ना कुछ इस्तेमाल होता है। तो शारखीन उसका जवाब देते हैं कि भाई साहिब हिदाया की मुराद यह है ऊपर जो उन्होंने कहा ला तुस्तामल फी गैरिही गालिबन, वहां पर भी गालिबन की कैद मलहूस है कि गालिबन वो गैर में इस्तेमाल होता ही नहीं, बहुत कम इस्तेमाल होता है, तो वहां भी गालिब की बात चल रही है, यहां भी गालिब ही की बात चल रही है। भाई वकदा ईदा नवल इबानता, और इसी तरह अगर खावन ने इबानत की नीयत की, खावन ने बीवी से कहा अंत तालिकुन, तुझे तलाक है, और इरादा उसका तलाक बाइन का है। मैंने आपको बतलाया था कि तलाक रजई वो है कि इद्दत के अंदर अंदर खावंद रुजो कर सकता है, सिर्फ इतना कह दे मैंने रुजो कर लिया बस वो तलाक खत्म हो गई, यानी उसका असर खत्म हो गया। हां अब बाकी तमाम जिंदगी ये शख्स दो ही तलाकों का मालिक है, लेकिन अब ये औरत फिर उसकी बीवी बन गई, यानी अब इद्दत गुजरने से वह जुदा नहीं होगी क्योंकि वह रुजो कर चुका है। तवज्जो है, तो लिहाजा तलाक रजई के अंदर इद्दत के अंदर अंदर खावंद रुजू कर सकता है, अपनी जुबान के जरिए भी या अपने किसी अमल के जरिए भी वो रुजू कर सकता है, जबकि तलाक बाइन के अंदर निकाह टूट जाता है और फिर खावंद इसी औरत को दोबारा रखना चाहता है तो नया निकाह करना पड़ेगा, चाहे इद्दत के अंदर निकाह करे चाहे इद्दत के बाद निकाह करे, नया निकाह नया महर मुकर्रर करना पड़ेगा। भाई मसला जिक्र कर रहे हैं साहिब हिदाया के, सरीह से तलाक रजई होती है बाइन नहीं। अगर एक आदमी सरीह लफ्ज इस्तेमाल करता है अंत तालिकुन और नीयत करता है तलाक बाइन की, तो कहते हैं उसकी ये नीयत लगव है, इसका कोई एतबार नहीं, तलाक रजई ही होगी, तलाक रजई ही होगी। वजह यह कि शरीयत ने अंत तालिकुन, ये जो सरीह लफ्ज है, इसके बाद शरीयत ने रुजू को रखा है। किसको रखा है? सरीह के बाद शरीयत ने क्या, अभी मैंने आयत जिक्र की वह बुउलतुहुन्ना अहक बिरद्दिहिन्ना, शरीयत क्या बतला रही है कि तलाक रजई देने से अभी निकाह नहीं टूटा, खावंद इसको रोक सकता है रुजू कर सकता है, और यह शख्स जो है अंत तालिकुन के जरिए बाइन की नीयत कर रहा है यानी शरीयत के एक हुक्म को बातिल करना चाहता है, तो इसकी नीयत को इस पर रद्द कर दिया जाएगा कि तुम्हारी इस नीयत का कोई एतबार नहीं। शरीयत ने तो सरीह के बाद रजत को रखा है और यह क्या करना चाहता है, तलाक बाइन वाके करके रजत को यानी शरीयत के हुक्म को बातिल करना चाहता है कि रुजो ना हो सके। नहीं भाई, आप शरीयत के हुक्म को बातिल नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं वह कदा ईदा नवल इबानता, और इसी तरह है जब खावन ने इबानत यानी जुदाई की नीयत की, لأنه قصد تنجيز ما علقه الشرع بانقضاء العدة فيرد عليه। याद रखो एक है तंजीज और एक है तालीक। तालीक का माना एक चीज को दूसरी चीज के साथ मुअल्लक करना, और तंजीज का माना है एक चीज को पूरा कर देना यानी वाके कर देना। तो लिहाजा जब अंत तालिकुन कहा सरीह कहा, तो शरीयत ने निकाह के टूटने को या यूं कहो जुदाई को मुअल्लक कर दिया इद्दत के गुजरने पर। जब क्या कहा, किस खावंद ने अपनी बीवी से क्या कहा, अंत तालिकुन या अंत मुतल्लकतुन या तल्लकतु की, कोई सरीह लफ्ज इस्तेमाल किया, तो शरीयत ने जुदाई को मुअल्लक कर दिया कि इन दोनों खावंद और बीवी में जुदाई अभी नहीं आई, कब आएगी जुदाई, जब इद्दत गुजर जाएगी। तो सरीह के अंदर शरीयत ने जुदाई को मुअल्लक कर दिया है इद्दत के गुजरने के साथ, और यह शख्स सरीह के जरिए फौरी तौर पर जुदाई वाके करना चाहता है, तो यानी यह तंजीज का इरादा कर रहा है। शरीयत ने तो तालीक की है कि सरीह में तलाक दे दी है, जुदाई अभी नहीं आई, जुदाई कब आएगी, عدت کے گزرنے کے بعد, اور یہ شخص فوری جدائی واقع کر کے شریعت کے حکم کو باطل کرنا چاہتا ہے تو اس کی نیت کو رد کر دیا جائے گا, یہ شریعت کے حکم کو باطل نہیں کر سکتا. ہاں یہ انت طالق بائن کوئی اور لفظ ساتھ بڑھاتا پھر ہو سکتا تھا, لیکن اس نے تو کوئی لفظ بھی نہیں بڑھایا اور ارادہ طلاق بائن کا کرنا چاہتا ہے, نہیں بھائی ایسا نہیں کر سکتا. تو کہتے ہیں وَقَذَا اِذَا نَوَلْ اِبَانَتَ, اور اسی طرح جب خاوند نے جدائی کی نیت کی تو یعنی اس کی نیت لغو ہو جائے گی, لِأَنَّهُ قَصَدَ, اس لیے کیونکہ خاوند نے ارادہ کیا ہے تَنْجِيزَ مَا عَلَّقَهُ الشَّرْعُ, اس جدائی کو پورا کرنے کا, مَا عَلَّقَهُ الشَّرْعُ جس کو شریعت نے معلق کیا تھا, بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ عدت کے گزرنے کے ساتھ, فَيُرَدُّ عَلَيْهِ تو خاوند پر اس کے ارادے کو رد کر دیا جائے گا. وَلَوْ نَوَتْ طَلَاقَ عَمْ وَسَاقٍ لَمْ يُدَيَّنْ فِي الْقَضَائِ, صورت مسئلہ یہ خاوند نے بیوی سے کہا انت طالقن, یا کہا انت مطلقتن, یا کہا طلقتکی, اور پھر بعد میں کہتے ہیں نہیں میرا ارادہ تو اس کو طلاق دینے کا نہیں تھا, میرا ارادہ تو اس کو قید سے آزاد کرنے کا تھا. قید سے انت طالقن یعنی میں تمہیں قید نہیں کروں گا تم آزاد ہو, یا انت مطلقتن تم قید سے آزاد ہو میں تمہیں قید نہیں کروں گا میں تمہیں بند نہیں کروں گا, یا طلقتکی میں نے تجھے آزاد کر دیا قید سے آزاد کر دیا میں تجھے بند نہیں کروں گا قید نہیں کروں گا. تو کہتے ہیں اس صورت میں قضاءً اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی, ہاں دیانتاً اس کی تصدیق کی جائے گی. قضاءً یعنی اگر قاضی کے پاس مسئلہ چلا گیا تو قاضی پھر طلاق ہی کا فیصلہ کرے گا کہ طلاق واقع ہوئی ہے, تم نے جس کا ارادہ کیا اس کا کوئی اعتبار نہیں. توجہ ہے مسئلہ کیا چل رہا ہے, خاوند نے صریح لفظ کہا ہے, جب صریح کہا ہے تو ایک طلاق واقع ہو گئی, لیکن وہ کیا کہنا چاہتا ہے ایک بھی نہیں واقع ہوئی میرا تو طلاق کا ارادہ ہی نہیں تھا میں تو صرف قید سے آزادی کی بات کر رہا تھا. تو آپ کو بتلائیں گے صاحب ہدایہ کہ اگر قاضی کے پاس مسئلہ چلا گیا تو قاضی طلاق ہی کا فیصلہ کرے گا, ہاں دیانتاً اس کی تصدیق کی جائے گی, یعنی یہ اس کے اور اللہ کا معاملہ ہے, اگر قاضی کے پاس مسئلہ نہیں جاتا اس کے اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے, اگر اس نے یہ نیت کی تھی تو پھر ایسا ہی ہوگا. تو کہتے ہیں ولو نوت طلاق عن وساق, وساق بہ ساق کے ساتھ یہ قید اور بند کو کہتے ہیں, ولو نوت طلاق عن وساق, اور اگر اس شخص نے طلاق عن وساق کی نیت کی یعنی قید سے آزادی کی نیت کی, تو لم یدین فی القضائی تو اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی فی القضائی قضا میں, لأنه خلاف الظاہری کیونکہ اس کی یہ بات جو ہے ظاہر کے خلاف ہے, ظاہر تو کیا ہے اس لفظ کے ذریعے طلاق کا ارادہ کیا جاتا ہے قید سے آزادی کا ارادہ نہیں کیا جاتا, ویدین فیما بینہ وبین اللہ تعالی, ہاں اس کی تصدیق کی جائے گی اس کے اور اللہ کے بیچ, یعنی یہ اس کے اور اللہ کا معاملہ ہے, اگر قاضی تک مسئلہ نہ گیا تو پھر اس تصدیق کی جائے گی, لأنہ یحتملہ اس لیے کیونکہ اس کا کلام اس کا احتمال رکھتا ہے, کیونکہ ہم نے بتا دیا کہ طلاق عرف میں زیادہ تر تو قید نکاح سے آزادی کے لیے استعمال ہوتی ہے, لیکن کبھی کبھار اور قیدوں سے آزادی کے لیے بھی طلاق کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے. تو لہذا بہرحال بائی اعتبار دیانتاً اس کی تصدیق کی جائے گی کیونکہ اس کے کلام میں اس معنی کا بھی احتمال تھا, لیکن قضاءً اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی. ولو نوا به الطلاق عن العمل لم يدين في القضاء ولا فيما بينه وبين الله تعالى, دوسری صورت اس نے بیوی سے کہا انت طالق یا انت مطلقت یا طلقتک, اور نیت یہ کی کہ بھئی میرا ارادہ تو یہ تھا کہ تو کام کاج سے آزاد ہے, تو کام کاج سے آزاد ہے میرا طلاق دینے کا ارادہ نہیں تھا, تو کہتے ہیں اس صورت کے اندر قضاءً بھی اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی اور دیانتاً بھی نہیں, دیانتاً بھی تصدیق نہیں کی جائے گی. تو کہتے ہیں ولو نوا بہ طلاق عن العمل, اور اگر اس نے نیت کی عمل سے یعنی کام کاج سے آزادی کی, لم یدین فی القضاء تو اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی قضاء میں, ولا فیما بینہ وبین اللہ تعالی, और ना उसके और अल्लाह के दरमियान, यानी दयानतन भी उसकी तस्दीक नहीं की जाएगी। लिअन्ना तलाक लिरफ़इल कैदी, इसलिए क्योंकि तलाक जो है वो रफ़े कैद के लिए आती है, जैसे कैद निकाह, कैद से आजादी के लिए तलाक का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। और काम काज के साथ तो कोई कैद नहीं होता, काम काज के साथ कोई मशगूल तो होता है, कैद नहीं होता। तो तलाक तो रफ़े कैद के लिए आती है, लिहाजा तलाक अनिल अमल का इरादा ठीक नहीं है भाई। तो कहते हैं लिअन्ना तलाक लिरफ़इल कैदी, इसलिए क्योंकि तलाक जो है वो कैद को उठाने के लिए, कैद को खत्म करने के लिए होती है। वह हुआ गैरु मुकय्यदिन बिल अमली, और वो जो है वो तो अमल के साथ तो मुकय्यद नहीं है, अमल के साथ तो कोई मशगूल होता है, कैद नहीं होता, तो यहां कैद है ही नहीं। वान अबी हनीफा रहमतुल्लाह, और इमाम साहब से अलबत्ता एक रिवायत यह है कि अन्नहु युदय्यनु फीमा बैनहु व बैन अल्लाह ताला, के इसकी तस्दीक की जाएगी इसके और अल्लाह के दरमियान। इमाम साहब से अलबत्ता एक रिवायत यह है कि दयानतन इसकी तस्दीक की जाएगी। जाहिर रिवायत में तो बतला दिया कि अगर इसने काम काज से आजादी का इरादा किया है तो न कजान इसकी तस्दीक की जाएगी और ना दयानतन, लेकिन इमाम साहब से एक रिवायत है कि दयानतन इसकी तस्दीक की जाएगी, इसलिए क्योंकि ये तलाक का लफ्ज कभी छुटकारे के लिए भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। किसके लिए? छुटकारे के लिए, यानी खावंद कह रहा है मैंने काम काज से छुटकारे की नियत की थी, तो लिहाजा दयानतन तस्दीक की जाएगी और कजान तस्दीक नहीं। दयानतन क्यों तस्दीक की जाएगी? क्योंकि कहते हैं कभी तलाक का लफ्ज छुटकारे के लिए भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो कहते हैं लिअन्नहु युस्तअमलु लित्तख्लीसी, इसलिए क्योंकि कभी कभार तलाक का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया जाता है लित्तख्लीसी, छुटकारे के लिए। वलौ काला अंतिम मुतलकतुम बितस्कीन ताइला यकूनु तलाकन इल्ला बिन्नियह। सूरत मसला ये, खावन ने अपनी बीवी से कहा अंतिम मुतलकतुम, कहना तो क्या चाहिए था अंतिम मुतल्लकतुन या अंतिम तालिकुन, लेकिन खावन ने मुतल्लका कहा, और अतलका युतलिको इतलाक का माना तो है आजाद करना, अंतिम मुतल्लकतुन तू आजाद है। अब इसमें तो कई मानी का इहतमाल आ गया, हो सकता है इसका माना यह है तू कामकाज से आजाद है, मैं गुलाम या बांदी का बंदोबस्त करूंगा वो कामकाज करेंगे, तू कामकाज से आजाद है, या अंतिम मुतलकतुन तू मेरी खिदमत से आजाद है, तुझे मेरी खिदमत करने की जरूरत नहीं, या अंतिम मुतलकतुन तू मेरे निकाह से आजाद है, यानी तुझे तलाक है जी। तो देखो अंतिम मुतलकतुन, इसमें मालूम हुआ तलाक का भी एहतमाल और गैर तलाक का भी एहतमाल, लिहाजा यह सरीह नहीं, यह किनाया है, और जब यह किनाया है तो अब उसकी नीयत देखी जाएगी। अगर खावन ने तलाक की नीयत की थी तो तलाक वाकई हो गई, और अगर उसने तलाक की नीयत नहीं की तो तलाक वाकई नहीं होगी। तो अंति तालिकुन, अंति मुतल्लकतुन या तल्लकतु की यह तो सरीह है, लेकिन अंति मुतल्लकतुन त्वा के सुकून के साथ यह सरीह नहीं, यह क्या है? किनाया है। वलौ काल अंतिम मुतलकतुन बितस्कीन त्वा, और अगर खावन ने अंतिम मुतलकतुन कहा त्वा को साकिन करते हुए ला यकूनु तलाकन इल्ला बिन्नियति, तो यह तलाक नहीं होगी मगर नीयत से ही, क्योंकि यह किनाया है और किनाये के लिए नीयत जरूर चाहिए। लिअन्नहा गैरु मुस्तअमलतिन फीहि उर्फन, इसलिए क्योंकि ये जो त्वा के सुकून के साथ लफ्ज है ये गैर मुस्तअमल है तलाक में, उर्फन उर्फ में आम लोगों की आदत में इसको वो तलाक के लिए इस्तेमाल नहीं करते। फलम यकुन सरीहन, तो ये सरीह नहीं होगा। काला वला यकउ बिही इल्ला वाहिदतुन व इन्नवा अक्सर मिन जालिका। मैंने आपको बतलाया के सरीह लफ्ज के जरिए तलाक रजई वाके होगी, नीज वहां नीयत की भी कोई हाजत नहीं, बगैर नीयत के ही, क्योंकि इस कलाम का और कोई माना ही नहीं है तो उसमें नीयत को भी देखने की जरूरत नहीं है। और नीज अब बतला रहे हैं कि इससे एक तलाक ही वाके होगी, एक से ज्यादा की नीयत की तो वह सही नहीं। लिहाजा एक शख्स अपनी बीवी से कहता है अंत तालिकुन और नीयत तीन की करता है, नहीं तीन नहीं हो सकती। या अंतिम मुतल्लकतुन और नियत तीन की करता है, नहीं तीन नहीं हो सकती। या कहता है तल्लकतु की, मैंने तुझे तलाक दे दी और नियत तीन की करता है, नहीं तीन की नियत नहीं हो सकती, क्योंकि यह सरीह है। सरीह के जरिए रजई होती है और रजई भी कौन सी? एक तलाक भाई। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं काल साहिब कुदूरी फरमाते हैं वला यकाउ बिही इल्ला वाहिदतुन, के इसके जरिए वाकई नहीं होगी मगर एक ही। व इन नवा अक्सर मिन ज़ालिका, अगर चे खावन इससे ज्यादा की नीयत करे एक ही वाकई होगी। व काल शाफिय रहमहुल्लाह तआला यकाउ मा नवा, इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं वाकई हो जाएगी वो जो खावंद ने नीयत की है, एक की नीयत की है, दो की है या तीन की, जितने की नीयत की है वो तलाक वाकई हो जाएगी। वकाल शाफी रहमल्ला या कौ मा नवा, और इमाम शाफी रहमल्ला फरमाते हैं वाकई हो जाएगी वो जो खावन ने नीयत की है। ले अन्नहु मुहतमल लफ्ज ही, इसलिए क्योंकि ये उस लफ्ज का मुहतमल है। इस अंति तालिकुन के अंदर एक तलाक होने का भी एहतमाल, दो का भी एहतमाल, तीन का भी एहतमाल, आगे चलकर हम बताएंगे इंद अल अहनाफ इसमें एक ही तलाक का एहतमाल है, दो या तीन का एहतमाल ही नहीं। लेकिन इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील चल रही है, वो क्या फरमाते हैं अंति तालिकुन के अंदर, अंति तालिकुन या कोई भी जो सरीह लफ्ज पीछे जिक्र हुए कि अंति तालिकुन के अंदर एक का भी एहतमाल, दो का भी एहतमाल और तीन का भी एहतमाल, तो जो खावंद नियत करेगा वही वाकई हो जाएगी। तो ये माना है लिअन्नहु मुहतमलु लफ्ज ही, इसलिए क्योंकि ये इसके लफ्ज का मुहतमल है। फइन नदिक्र तालिक जिक्रुन लित्तलाक लुगतन का जिक्र आलिमी जिक्रुन लिल इल्मी, इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील चल रही है, वो फरमाते हैं याद रखो सबसे पहले मस्दर के बारे में समझ लें। मस्दर जो है वो इसमें जिंस है, मस्दर क्या है इसमें जिंस है, इसमें जिंस उसे कहते हैं जो कलील और कसीर सब पर बोला जाए। वैसे तो देखो एक किताब हो तो आप कहते हैं किताबुन, दो हो तो आप कहते हैं किताबानी, ज्यादा हो तो आप कहते हैं कुतुब, देखो जमा का लफ्ज लाते हैं। तो देखो वैसे तो मुफरत तस्निया जमा अलग अलग है भाई, बात समझ में आ गई, लफ्ज ही अलग है। किताबुन मुफरत का लफ्ज है, किताबानी तस्निया का लफ्ज है, और कुतुब क्या है जमा का लफ्ज है। लेकिन इसमें जिंस जो है वो कलील और कसीर पर यानी सारे मजमुए पर बोला जाता है और लफ्ज में भी कोई तब्दीली नहीं की जाती। मसलन एक इंसान हो तब भी आप कहते हैं ये इंसान है, और तमाम दुनिया के इंसानों का की आप नियत करें तब भी आप कहेंगे ये इंसान है। तो पहले भी लफ्ज इंसान था, अब भी क्या है इंसान। देखो लफ्ज में जरा भी तब्दीली नहीं आई, जबकि वहां तब्दीली आ रही थी किताबुन किताबानी कुतुबुन, देखो लफ्ज ही बदल रहा था, लेकिन इसमें जिंस में लफ्ज नहीं बदलता। उसी लफ्ज का इतलाक कलील पर भी होता है और कसीर यानी सारे मजमुए पर भी, सारे मजमुए पर। तो ये इसमें जिंस होता है, और याद रखो मस्तर भी इसमें जिंस है, मस्तर भी इसमें जिंस है। एक जर्ब हो तब भी आप कहेंगे जर्ब है, और सारी दुनिया की जर्बें मुराद ले लें फिर भी आप कहेंगे जर्ब है। मस्तर क्या है इसमें जिंस है। तो चुनांचे इसीलिए किताबों के अंदर आता है किताबुल बुयूर, फिर वहां शारहीन एतराज करते हैं कि बै मस्तर है, मस्तर है और मस्तर तो इसमें जिंस है, और इसमें जिंस का इतलाक तो कलील और कसीर सब पर होता है, तो फिर बुयू जमा लाने की क्या जरूरत थी। तो जवाब देते हैं कि बै की मुख्तलिफ अकसाम की तरफ इशारा करने के लिए, कि बै की बहुत सी अकसाम हैं, इसलिए किताबुल बुयू का वो लफ्ज जिक्र करते हैं। तवज्जो है, तो लिहाजा मालूम हुआ मस्तर क्या है इसमें जिंस है। अब दलील चल रही थी इमाम शाफी रहमतुल्लाह की, इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हर मुश्तक के जिमन में मुश्तक मिनहू जरूर पाया जाता है। याद रखो ये जो मस्तर है ये है मुश्तक मिनहू, यानी जिससे इश्तिकाक किया गया है, एक नया लफ्ज बनाया गया है। मस्तर है जरबुन, इससे फेल बना जाराबा, इसी तरह इस जरबुन से बना यजरिबु, इसी तरह इस जरबुन से बना जारिबुन इसमें फाइल, और या इसी तरह मजरूबुन। तो ये सब इन सब का इश्तिकाक मस्तर से होता है, मस्तर कहलाएगा मुश्तक मिनहू जिससे इश्तिकाक किया गया यानी लफ्ज को बनाया गया, और जो लफ्ज बनाए गए यानी माजी मुजारे इसमें फाइल इसमें मफूल वगैरह ये सब क्या हैं मुश्तकात हैं। तो जब भी मुश्तक का जिक्र आता है उसके जिम्मन में मुश्तक मिनहू खुद ब खुद आ जाता है। दलील चल रही है इमाम शाफी रहमतुल्लाह की, वो फरमाते हैं जब भी मुश्तक आता है तो उसके जिम्मन में मुश्तक मिनहू आ जाता है। मसलन देखो मुश्तक मिनहु क्या है, जरबुन, पिटाई करना, यह मस्तर क्या है, मुश्तक मिनहु, और इससे फेल बना जराबा। जराबा का तर्जमा करें, जराबा जैदुन, जैद ने पिटाई की, या यूं कहो जैद ने जरब लगाई, जैद ने जरब लगाई, देखो जरब आ गया या नहीं, या जारिबुन तर्जमा करो, जरब लगाने वाला, देखो जरब का तर्जमा आ गया, मजरूबुन जिसको जरब लगाई गई, देखो हर जगह जरब आ रहा है, जहां भी मुश्तक आता है वहां मुश्तक मिनहू जरूर आता है। यह दूसरे तरीके से समझ लें, आपने नह के अंदर पढ़ा होगा कि फेल जो है, फेल का लफ्ज यह तो मुफरद है लेकिन इसका माना मुरक्कब है। फेल का माना तीन चीजों से मुरक्कब होता है, एक उसमें माना मस्दरी होता है, तो इस जराबा के अंदर जरब मस्दर भी आ गया। दूसरा इसके अंदर जमाना होता है, जराबा से जमाने का भी पता चल गया कि यह माजी का जमाना है, जराबा माजी का सीगा है तो माजी का जमाना है, और निस्बत इलल फाइल भी आ गई, मालूम हुआ कोई जात है जरब लगाने वाली, वरना यह जराबा का फेल वैसे नहीं हो सकता था। तो फेल जो है लफ्ज के एतबार से मुफरद है लेकिन इसका मफहूम मुरक्कब है तीन चीजों से, एक इसके अंदर माने मस्तरी होगा यानी मस्तर होगा, दूसरा जमाना होगा, और तीसरा निस्बत इलल फाइल होगी। इसी तरह इसमें फाइल है जारिबुन, इसके अंदर भी एक वो जरब मस्तर वाला माना है और दूसरा एक जात है जो ये जरब लगाने वाली है, तवज्जो है। तो मालूम हुआ मुश्तक के जिमन में मुश्तक मिनहू भी आ जाता है। तो जब खावन ने बीवी से कहा अंति तालिकुन, तो तालिकुन इसमें फाइल है और इसमें फाइल मुश्तक है, और मुश्तक के जिमन में मुश्तक यानी तलाक भी आ गई। तालिकुन तो इसमें फाइल है लेकिन इसके जिमन में मस्तर तलाक भी आ गई, और तलाक क्या है, इसमें जिंस है, उसका इतलाक कलील और कसीर सब पर होता है। लिहाजा मालूम हुआ कि इस अंति तालिकुन के जरिए भी एक से ज्यादा की नीयत सही है। तो कहते हैं फइन्न ذِكْرَ الطَّالِقِ ذِكْرٌ لِلطَّلَاقِ لُغَةً, इसलिए क्योंकि तालिकुन को जिक्र करना ये तलाक को जिक्र करना है लुगतन, अरबी जुबान के एतबार से। जब आपने तालिकुन को जिक्र किया तो गोया तलाक को भी आपने जिक्र कर दिया, जाराबा को आपने जिक्र किया तो गोया जर्ब को भी जिक्र कर दिया, शरीबा को आपने जिक्र किया तो शुर्ब को भी जिक्र कर दिया, समिया को जिक्र किया तो समउन को भी जिक्र कर दिया। तो कहते हैं फइन्न ذِكْر الطَّالِقِ ذِكْرٌ لِلطَّلَاقِ لُغَةً, इसलिए क्योंकि तालिकुन यानी मुश्तक का जो जिक्र है, ذِكْرٌ لِلطَّلَاقِ ये तलाक यानी मस्तर का भी जिक्र है लुगतन अरबी जुबान के एतबार से, का जिक्र العالم ذِكْرٌ لِلْعِلْمِ, जैसे कि आलिम का जिक्र यह इलम का भी जिक्र है। वलिहादा यसिहु قِرَانُ الْعَدَدِ بِهِ, इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील चल रही है, कहते हैं वली हादा और इसी वजह से यसिहु किरानुल अदद बिही, इसके साथ अदद को मिलाना भी सही है। खावन बीवी को कहता है अंत तालिकुन सलासन, तो इस सूरत में अहनाफ आपके नजदीक भी तीन तलाकें हो जाती हैं, या खावंद अपनी बीवी से कहता है अंत तालिकुस्नतैन कि तुझे दो तलाकें हैं, तो ए अहनाफ आपके नजदीक भी दो तलाकें हो जाती हैं, और ये सलासन और इस्नतैन ये तमीज वाकई हो रहे हैं। ये क्या है, तमीज, और तमीज किसे कहते हैं, आपने पढ़ा है तमीज जो है वो निस्बत से इबहा, वो निस्बत से इबहाम को दूर करती है। मसलन मैंने कहा तौबा जैदुन, तौबा तौ के साथ तौजवा, तौबा जैदुन, जैद अच्छा है। अब भाई किस एतबार से अच्छा है, अपनी जात के एतबार से अच्छा है, या अपने इलम के एतबार से अच्छा है, या बाप होने के एतबार से अच्छा है, तो इसके अंदर इबहाम है, तो आगे तमीज आकर उस इबहाम को दूर कर देगी। मसलन मैं कहता हूं तौबा जैदुन नफसन, जैद अच्छा है नफसन अपनी जात के एतबार से, या मैं इलम का लफ्ज ले आता हूं तौबा जैदुन इल्मन, जैद अच्छा है इलम के एतबार से, यानी वो उसके पास अच्छा इलम है, या तौबा जैदुन अबन, जैद अच्छा है बाप होने के एतबार से कि वो अच्छा बाप है या उसका बाप अच्छा है। तो तमीज जो है वो निस्बत से इबहाम को दूर करती है। बात चल रही है अंति तालिकुन सलासन की। امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دیکھو انتی طالقن کے ساتھ سلاسن تمیز کا لانا صحیح ہے، اور تمیز کیا کرتی ہے؟ نسبت کے اندر جو ابہام ہوتی ہے اس کو دور کرتی ہے. پھر دوہرائیں تمیز جو ہے نسبت کے اندر جو ابہام ہوتی ہے اس کو دور کرتی ہے. دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ ماقبل والے کلام میں کئی احتمال تھے، تمیز آ کر اس ایک احتمال کو متعین کر دیتی ہے. طاب زید، زید اچھا ہے، اس میں احتمال تھا پتہ نہیں ذات کے اعتبار سے اچھا ہے یا علم کے اعتبار سے اچھا ہے یا باپ ہونے کے اعتبار سے اچھا ہے، اس میں تینوں احتمال تھے. تو آگے آپ نفسن لائے تو اس نے متعین کر دیا کہ زید اپنی ذات کے اعتبار سے اچھا ہے. اگر آپ علمن لے آئیں گے تو پتہ چلا زید اپنے علم کے اعتبار سے اچھا ہے، اور اگر آپ ابن لے آئے تو معلوم ہوا زید اپنے باپ کے اعتبار سے اچھا ہے، یعنی زید کا باپ اچھا ہے یا زید خود اچھا باپ ہے. تو تمیز کیا کرتی ہے؟ نسبت سے ابہام کو دور کرتی ہے. دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ اس نسبت کے اندر جو احتمالات تھے ان میں سے ایک احتمال کو تمیز متعین کر دیتی ہے، پکا کر دیتی ہے. تو معلوم ہوا طاب زید ان کے اندر کئی احتمال تھے، آگے جو بھی تمیز آپ لائیں گے اس احتمال کو پکا کر دے گی. اگر کلام کے اندر ایک چیز کا احتمال ہی نہ ہو تو آگے آپ وہ تمیز بھی نہیں لا سکتے، تمیز وہی لائیں گے جس کا احتمال بھی تھا ماقبل میں. طاب زید ان کے اندر ذات کے اچھا ہونے کا بھی احتمال تھا، علم کے اچھا ہونے کا بھی احتمال تھا، اور باپ کے اچھا ہونے کا بھی احتمال تھا. اسی لیے آگے آپ نفسن، علمن یا ابن لا سکتے ہیں. اگر ایک چیز کا احتمال ہی نہ ہوتا نسبت کے اندر تو آپ وہ آگے تمیز بھی نہیں لا سکتے. اور انت طالقن کے آگے سلاسن جو آ رہا ہے یہ تمیز ہے. یہ اور تمیز کیا کرتی ہے؟ کلام کے احتمالات میں سے ایک احتمال کو متعین کر دیتی ہے. معلوم انت طالقن کے اندر سلاسن کا احتمال تھا، اسی احتمال کو آگے سلاسن نے آ کر پکا کر دیا. اگر انتی طالقن کے اندر سلاسن کا احتمال نہ ہوتا تو آگے سلاسن تمیز لانا بھی جائز نہ ہوتا. بھائی تو آگے سلاسن تمیز لانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انتی طالقن میں سلاسن کا احتمال تھا. بھائی بات سمجھ میں آ گئی. جبکہ ہمارا مذہب آپ نے پڑھ لیا، ہمارے نزدیک انتی طالقن سے تین کی نیت صحیح نہیں ہے، جبکہ وہ فرماتے ہیں ایک سے زیادہ کی نیت بھی صحیح ہے، کیونکہ اس کلام کے اندر احتمال ہے بھائی، کیونکہ مشتق کے ضمن میں مشتق منہ یعنی مصدر بھی آ جاتا ہے بھائی. دلیل بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو کہتے ہیں ولہذا، اور اسی وجہ سے، یصح قران العدد به، صحیح ہے قران کا معنی ملانا، یصح قران العدد به، اس کے ساتھ عدد کا ملانا بھی صحیح ہے، یعنی انت طالق سلاسن کہنا بھی صحیح. اور سلاسن کیا ہے؟ تمیز. اور تمیز کیا کرتی ہے؟ نسبت سے ابہام کو دور کرتی ہے، اور یعنی ماقبل میں جو احتمالات تھے ان میں احتمالات میں سے ایک کو، اس احتمال کو متعین کر دیتی ہے. معلوم ہوا انت طالق میں تین کا احتمال تھا، یا انت طالقن اثنتین، تو یہاں پر معلوم ہوا انت طالقن میں اثنتین کا احتمال تھا، جب ہی تو اثنتین نے آ کر اسے ابہام کو دور کر دیا. تو کہتے ہیں ولہذا یصح قران العدد به، اور اسی لیے اس انت طالقن کے ساتھ عدد کا ملانا صحیح ہے. فیکون نصبا علی التفسیر، تو یہ جو نصب ہوگا یہ تفسیر پر ہوگا، یعنی جو سلاسن پر نصب آیا ہے یہ تفسیر، یعنی تمیز بھی کیا کرتی ہے؟ ابہام کو دور کرتی ہے، یعنی تفسیر کرتی ہے. تو یہاں تفسیر سے کیا مراد ہے؟ تمیز ہی مراد ہے. فیکون نصبا علی التفسیر، تو یہ جو نصب ہے یہ تفسیر یعنی تمیز ہونے کی بنا پر ہے. اب ہماری دلیل آ گئی. ولنا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ انہ نعت فرد، کہ یہ جو انت طالقن ہے یہ مفرد کی صفت ہے. نعت کا معنی صفت، انت طالقن یہ طالقن مفرد کی صفت ہے. اصل میں کلام یوں ہے انت امرأۃن طالقن، انت امرأۃن طالقن، تو یہ امرأۃ مفرد ہے اور طالقن اس مفرد کی صفت ہے. توجہ ہے؟ تو ہم کہتے ہیں ولنا، اور ہماری دلیل یہ ہے، انہ نعت فردین، کہ یہ جو طالقن کا لفظ ہے یہ مفرد کی صفت ہے. حتی قیل للمسنا طالقانی وللثلاث طوالق، یہاں تک کہ طالقن مفرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، تثنیہ کے لیے طالقانی لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جمع کے لیے طوالق، तालिकुन का माना तलाक वाली, तालिकानी दो तलाक वालियां, और तवालिक कई तलाक वालियां। तो अगर एक बीवी को तलाक देना चाहता है तो खावन क्या कहेगा, अंते तालिकुन, और अगर दो को तलाक देना चाहता है तो अंतुमा तालिकानी, और अगर ज्यादा को जब तलाक देना चाहता है तो अंतुन्ना तवालिकु कहेगा। तो मालूम हुआ जो तालिकुन है ये किसकी सिफत है, मुफरद की सिफत। ये जब ये मुफरद की सिफत है तो जब मौसूफ मुफरद हो तो सिफत भी क्या होती है, मुफरद ही होती है। तवज्जो है, देखो अभी दलील चल रही है। तो ये मुफरद की सिफत है लिहाजा इसमें अदद का इहतेमाल नहीं है, इसमें अदद यानी दो और तीन का इहतेमाल नहीं है। याद रखो इल्म रियाजी वालों के नजदीक ये जो एक है ये अदद नहीं, इल्म रियाजी वालों के नजदीक ये जो एक है ये अदद नहीं। हां ऊपर दो तीन चार ये सब अदद हैं, दरअसल वो अदद की तारीफ करते हैं, वो तारीफ इस एक पर सादिक नहीं आती। अदद की वो तारीफ करते हैं मजमुआए हाशियातैन का निसफ। अदद किसे कहते हैं, मजमुआए, दोहराए भाई, मजमुआए हाशियातैन का निसफ, हाशिया किनारे को कहते हैं। मजमुआ हाशियातैन दो किनारों का जो मजमुआ है उसका निसफ जो है वो अदद होता है जी। दो किनारों का मजमुआ, दो किनारों का जो मजमुआ है उसका निसफ ये है अदद भाई। मसलन हम देखना चाहते हैं कि दो अदद है या दो अदद नहीं, तो दो से ऊपर क्या है तीन और नीचे क्या है एक, तो ये एक और तीन ये दो के दो किनारे हो गए। निचले किनारे पर क्या एक और ऊपर वाले किनारे पर तीन, एक और तीन को जमा करें कितने हो गए चार, और इस चार का निसफ करें दो, मालूम है दो अदद है। मजमुआ हाशियातैन का निसफ दोनों किनारों के जो मजमुआ है उसका निसफ ये अदद होता है। अब हम देखना चाहते हैं तीन अदद है या नहीं, तो तीन से ऊपर का किनारा क्या चार और तीन से नीचे का किनारा क्या दो, तो इन दो किनारों को जमा करें दो और चार छह, इस छह का निसफ करें तीन, मालूम है तीन अदद है। इसी तरह हम देखना चाहते हैं पांच जो है ये अदद है या नहीं, तो पांच के ऊपर का किनारा छह और पांच से नीचे चार, तो दो किनारे क्या हो गए छह और चार, इनको जमा करें दस और इस दस का निसफ पांच, मालूम है पांच अदद है। तो अदद किसे कहते हैं, मजमुआए हाशियातैन का निसफ, और एक जो है ये एक अदद नहीं, इसलिए क्योंकि एक के ऊपर तो दो का अदद है लेकिन एक से नीचे तो कोई अदद नहीं है, मालूम है एक अदद नहीं। तो हमारी दलील चल रही है, दलील ये चल रही है साहिब हिदाया आपको बतला रहे हैं कि अंति तालिकुन के अंदर ये जो तालिकुन है ये मुफरद की सिफत है। ये किसकी सिफत है, मुफरद की सिफत है, ये तस्निया या जमा की सिफत नहीं है। अगर तस्निया की सिफत होती तो तालिकान ही होता, अगर जमा की सिफत होती तो तवालिक होता, लेकिन ये तो तालिकुन है, ये मुफरद की सिफत है। जब ये मुफरद की सिफत है तो इसमें अदद का इहतेमाल नहीं, क्योंकि जब मौसूफ मुफरद हो तो सिफत भी क्या होती है मुफरद, उसमें तस्निया या जमा वगैरह का इहतेमाल नहीं होता, लिहाजा इसमें अदद का इहतेमाल नहीं, क्योंकि अदद वो तो इसकी जिद है, एक अदद नहीं है और ऊपर वाले बाकी सारे क्या हैं अदद हैं। मालूम हुआ अदद और मुफरद इन दोनों में मुनाफात है, एक चीज मुफरद हो तो अदद नहीं हो सकती और जो अदद है वो मुफरद नहीं हो सकता। तवज्जो है, लिहाजा ये जो सिफत है ये किसकी सिफत है, मुफरद की सिफत, तो मालूम हुआ इसमें अदद का इस्तेमाल नहीं, क्योंकि अदद तो इसकी जिद है, इसके मुखालिफ है भाई। लिहाजा इस तालिकुन में तस्निया और जमा वाला माना नहीं है, उसका आप इरादा नहीं कर सकते। तवज्जो है, लफ्ज से उसी माना का इरादा हो सकता है जिसका उसमें इहतेमाल हो, एक लफ्ज के अंदर एक माना का इहतेमाल ही नहीं है, आप उसका इरादा भी नहीं कर सकते। मसलन खावंद अपनी बीवी से कहता है अंति तालिकुन और बाद में कहता है भाई मेरा तो मतलब यह था अंति जमीलतुन जिद्दन, तुम बहुत खूबसूरत हो। ये कैसा माना आप कर रहे हैं, लफज बोल रहे हैं अंति तालिकुन और इरादा क्या कर रहे हैं अंति जमीलतुन, अंति तालिकुन के अंदर तो अंति जमीला के माना का इहतेमाल ही नहीं है, लिहाजा वहां तलाक वाकई हो जाएगी। तो लफज से ऐसे माना का इरादा तो हो सकता है जिसमें उसका इहतेमाल भी हो। तवज्जो है, इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते थे अंति तालिकुन, इसके लिए एक से ज्यादा तलाकों का इरादा भी सही है क्योंकि ज्यादा का भी इसके अंदर एहतमाल मौजूद है। और हमारे नजदीक ये अंति तालिकुन ये मुफरत की सिफत है, ये जब मुफरत की सिफत है तो ये सिफत मुफरत हुई तो इसके अंदर अदद यानी दो या तीन का एहतमाल नहीं हो सकता भाई
जी।
तो दो और तीन का जब इसके अंदर एहतमाल ही नहीं है तो आप उसकी नीयत भी करें तो उसका कोई फायदा नहीं, उसका एतबार नहीं है। तो कहते हैं वलाना, हमारी दलील यह है अन्नहु नातु फर्दिन के जो तालिकुन है ये मुफरद की सिफत है। हत्ता कील लिल मुसन्ना तालिकानी, यहां तक के तस्निया के लिए तालिकानी कहते हैं, वलि सलासी तवालिकु और तीन के लिए तवालिक कहते हैं। फला यहतमिलुल अददा, तो लिहाजा ये जो मुफरद है ये अदद का एहतमाल नहीं रखता। लिअन्नहु जिद्दुहु, इसलिए क्योंकि ये अदद जो है ये तो इस मुफरद की जिद है। व जिक्रु तालिक जिक्रुन लितलाकिन हुआ सिफतुन लिलमरअति ला लितलाकिन हुआ ततलीक। इमाम शाफी रहमतुल्लाह क्या फरमाते थे कि मुश्तक के जिमन में मुश्तक मिनहु भी आ जाता है, तो तालिकुन के जिमन में तलाक मस्तर भी आ गया, तालिकुन के जिमन में तलाक मस्तर भी आ गया। याद रखो एक है तलाक एक है ततलीक। तलाक ये औरत की सिफत है, औरत तलाक वाली हो जाती है, और ततलीक तल्लका युतल्लिकु, ततलीक का माना है तलाक देना, और ये तलाक देना ये खावन का काम होता है, ये खावन की सिफत है, खावन तलाक देता है। तो तलाक भी मस्तर और ततलीक भी मस्तर, लेकिन तलाक सिफत है औरत की और मर्द की जो सिफत है वो तलाक नहीं है, वो ततलीक है। तो तलाक मस्तर जो है वो औरत की सिफत है और ततलीक यानी तलाक देना ये मर्द की सिफत है भाई। मर्द ततलीक करता है यानी तलाक देता है, तो ये ततलीक जो खावंद की सिफत है इसमें तो अदद का एहतमाल है, खावंद एक भी तलाक दे सकता है, दो ततलीक भी कर सकता है, तीन ततलीक भी कर सकता है। जबकि तलाक मस्तर जो औरत की सिफत बनता है, याद रखो उसमें तअद्दुद नहीं होता, उसमें तअद्दुद नहीं होता। औरत तलाक वाली है, इसमें तअद्दुद नहीं होता कि एक वाली है दो वाली है या तीन वाली है। हां इसमें कैफियत में फर्क होता है कि या तो औरत तलाक रजई वाली है या तलाक बाइन वाली है भाई। तो ततलीक जो मर्द की सिफत है उसमें तो अदद का एहतमाल है, लेकिन तलाक जो औरत की सिफत है उसमें तो अदद का एहतमाल नहीं, उसमें सिर्फ कैफियत मुख्तलिफ होती है, या तलाक वाली है तो तलाक रजई वाली होगी या तलाक बाइन वाली होगी भाई, एक और दो से वहां कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। तो यहां पर भी अंति तालिकुन के अंदर इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते थे कि ये तालिकुन ये मुश्तक है और मुश्तक के जिमन में मुश्तक मिन्हु आ जाता है, तो तालिकुन के जिमन में तलाक आ गई। तो हम कहते हैं तालिकुन के जिमन में जो तलाक मस्तर आया है वो वाला मस्तर है जो औरत की सिफत है, जो मर्द की सिफत है वो नहीं, और जो औरत की सिफत है उसके अंदर तो अदद का एहतमाल नहीं, उसके अंदर तो सिर्फ कैफियत मुख्तलिफ होती है, रजई होगी या बाइन हो सकती है, वहां आदत का एहतमाल नहीं। तो अंति तालिकुन के जिमन में जो मस्तर आया है वो तलाक मस्तर है, ततलीक नहीं, और तलाक मस्तर में आदत का एहतमाल नहीं क्योंकि वो औरत की सिफत है भाई। तो वो औरत की सिफत है और ततलीक मस्तर होता, ततलीक मस्तर जो है वो नीयत का महल है, ततलीक के अंदर खावन एक या एक से ज्यादा की नीयत कर सकता है, लेकिन तलाक जो औरत की सिफत है वो तो नीयत का महल नहीं है भाई। तो कहते हैं वह जिक्र तालिक जिक्रुन लितलाकिन हुआ सिफतुन लिलमरअति, और तालिकुन का जिक्र ये जिक्र करना है उस तलाक को जो औरत की सिफत है, ला लितलाकिन हुआ ततलीकुन, ये उस तलाक का जिक्र नहीं जो ततलीक है यानी जो खावन की सिफत है। वल अददुल्लदी यक्तरिनु बिही नातुन लिमस्तरिन महजूफिन मानाहु तलाकन सलासा। अब इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने जिक्र किया था अंति तालिकुन सलासन, यह अंति तालिकुन के साथ सलासन तमीज आती है और तमीज इबहाम को दूर करती है, यानी कलाम के एहतमालात में से एक एहतमाल को मुतायन करती है। मालूम हुआ अंती तालिकुन के अंदर भी सलासन का इहतमाल था, जब ही सलासन ने आकर उस इबहाम को दूर किया। हम जवाब देते हैं कि नहीं, ये जो सलासन आगे आया है ये तमीज नहीं है, बल्कि ये सिफत है मस्तर महजूफ की। असल में है मसलन खावन ने कहा अंती तालिकुन सलासन, तो इस सलासन ये सिफत है, इससे पहले मौसूफ तलाकन महजूफ निकाल लेंगे, तो गोया कलाम यूं है अंती तालिकुन तलाकन सलासन, अंती तालिकुन तलाकन सलासन। तो ये जो सलासन है ये मस्तर महजूफ की सिफत है, कहते हैं ये इसी तरह है जैसे कोई शख्स कहता है अअतैतुहु जजीलन, जजील का माना कसीर यानी बहुत ज्यादा, अअतैतुहु जजीलन। अब ये जजीलन जो है ये सिफत है मौसूफ महजूफ है, अअतैतुहु इअतान जजीला, अअतैतुहु इअता अन जजीला, यानी मैंने उसको बहुत कसीर इअता की भाई। या ये इसी तरह है जैसे आप कहते हैं जजाकल्लाहु खैरा, जजाकल्लाहु खैरा, असल में क्या है ये खैरन सिफत है मौसूफ महजूफ की, जजाकल्लाहु जजा अन खैरा, जजाकल्लाहु अल्लाह आपको बदला दे, जजा अन खैरा अच्छा बदला। तो बामुहावरा तर्जमा क्या होगा, जजाकल्लाहु खैरा अल्लाह आपको अच्छा बदला दे भाई। तो जैसे ये खैरन का मौसूफ महजूफ है, जजीलन का मौसूफ महजूफ है, इसी तरह अंती तालिकुन सलासन, इसके अंदर ये सलासन का मौसूफ भी महजूफ है जो मस्तर है, लिहाजा ये तमीज है ही नहीं। अगर सलासन तमीज होती फिर आपकी दलील बन जाती, लेकिन ये तो तमीज नहीं है। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वल अददुल लजी यक्तरिनु बिही नातुन लिमस्तरिन महजूफिन, और वो अदद जो इसके साथ मिल गया है नातुन लिमस्तरिन महजूफिन, वो मस्तर महजूफ की सिफत है, मानाहु और माना इसका है तलाकन सलासन, अंती तालिकुन सलासन का क्या माना है, अंती तालिकुन तलाकन सलासन का कौली का, जैसे कि आपका यह कौल है अअतैतुहु जजीलन ऐ इअतान जजीला, तो यहां पर भी जजीलन इअता की सिफत है कि मैंने उसको बहुत ज्यादा अता किया भाई। आगे देखिए वलौ काला अंति तलाकु औ अंति तालिकुनि तलाका औ अंति तालिकुन तलाकन फैलम तकुन लहू नियतुन औ नवा वाहिदतन औ सिंतनी फही वाहिदतुन रजयतुन व इन नवा सलासन फसलासुन। आप देखो मस्तर ले आएंगे, मस्तर ले आए, मसलन खावन पहले क्या कहा था अंति तालिकुन, अब कहता है अंति तलाकु, अब तलाक मस्तर ले आया मुअर्रफ बिल्लाम अलिफ लाम के साथ अंति तलाकु। इस सूरत में याद रखो हमारे फुकहा फरमाते हैं कि एक तलाक तो इससे कतई तौर पर हो जाएगी क्योंकि यह सरीह है और सरीह से एक हो जाती है, लेकिन यह मस्तर है और मस्तर इसमें जिन्स है जो कलील के साथ कसीर का यानी पूरी जिन्स का भी इहतमाल रखता है, पूरी जिन्स का भी इहतमाल रखता है, और औरत की जिन्स से तलाक कितनी है, ज्यादा से ज्यादा कितनी तलाकें हैं तीन, यानी पूरी जिनसे तलाक तीन है, तीन अफराद पर मुश्तमिल है, तो पूरी जिन्स का इरादा भी सही हो जाएगा क्योंकि क्योंकि तलाक क्या है मस्तर, और मस्तर इसमें जिन्स है और इसमें जिन्स वो कलील और कसीर सब पर बोला जाता है भाई, वो कलील और कसीर सब पर बोला जाता है। तो अंति तलाकु तवज्जो है, लफ्जों में फर्क समझ में आ रहा है, पहले क्या था अंति तालिकुन, तालिकुन वो तो इमरा थी, सिफत का सीगा इस्तेमाल किया था कि तू तलाक वाली है, लेकिन यहां वो मस्तर बोल रहा है अंति तलाकु तू तलाक है। तो यहां आपको साहिब हिदायत बतलाएंगे कि ये तलाक भी बमाने तालिकुन के है, तलाक भी बमाने तालिकुन के है, लिहाजा एक तलाक तो इसे कतई हो जाएगी, लेकिन इस्तेमाल तो उसने मस्तर किया है और मस्तर के अंदर कलील और कसीर का इस्तेमाल होता है, लिहाजा अगर तीन की नियत की तो तीन भी हो जाएंगी, लेकिन अगर दो की नियत की दो नहीं होंगी, दो नहीं, क्योंकि दो अदद महज है। याद रखो आगे चलकर साहिब हिदाया भी बतलाएंगे, आप यहीं समझ लें कि जिन्स का इतलाक कलील पर भी होता है और कसीर पर भी, कलील यानी एक फर्द पर, कलील यानी एक फर्द, एक इंसान हो तब भी कहेंगे एक इंसान। और अगर आप पूरी जिनसे इंसान के अफराद का इहाता करते हैं तो यानी पूरी जिन्स का इरादा कर लिया, और पूरी जिन्स ये भी तो एक ही जिन्स है, ये भी तो एक ही जिन्स है, तो पूरी जिन्स का भी इरादा कर सकते हैं। तवज्जो है, देखो फिर सुनो, फिर सुनो, तलाक मस्तर है, तलाक क्या है, मस्तर है, सीगा तो मुफरद का है, सीगा तो मुफरद का है, लेकिन है तो इसमें जिन्स, और इसमें जिन्स का इतलाक कलील पर भी होता है और कसीर पर भी
जी।
और कलील कम से कम कितना है, एक फर्द, एक, तो एक का भी इरादा सही, और कसीर यानी सारों का मजमुआ बनाकर उनको एक फर्द बना लो, यानी सारी जिन्स, तो ये भी फर्द है लेकिन हुक्मन फर्द है, यानी पूरी जिन्स के अफराद आपने मिला लिए और ये सारा इसको एक का ही हुक्म दे दी, ये सारा एक ही मजमुआ है, ये सारा एक। तो याद रखो कि जिन्स जो है उसका इतलाक कलील पर भी होता है और कसीर पर भी, ये यूं कहो कि जिन्स जो है इसका इतलाक फर्द पर होगा, किस पर, फर्द, लेकिन वो फर्द हकीकतन भी फर्द हो सकता है और हुक्मन भी फर्द हो सकता है। ये यूं कहो मुफरद कि जिन्स का इतलाक मुफरद पर होगा, क्योंकि जिन्स का लफ्ज मुफरद का लफ्ज है, इंसान क्या है, जमा है या मुफरद का लफ्ज है, लफ्ज तो मुफरद है अगरचे इसमें जिन्स है लेकिन लफ्ज तो मुफरद का है। इसी तरह तलाक अगरचे मस्तर है लेकिन मुफरद का लफ्ज है, बात समझ में आ रही है। तो लिहाजा इसका इतलाक मुफरद पर ही होगा, लेकिन मुफरद दो तरह से हो सकता है, एक हकीकतन मुफरद हो यानी एक, एक फर्द जब है तो यह हकीकत में ही मुफरद है, और एक है मुफरद हुक्मी यानी जिस पर मुफरद होने का हुक्म लगा दिया गया और वो पूरी जिन्स है
जी।
सारी जिन्स को यानी इंसान के सारे अफराद को आपने मिला लिया, ये सारी क्या है, एक ही जिन्स है, ये एक ही फर्द के दर्जे में है
जी।
तवज्जो है, मालूम हुआ जिन्स का इतलाक मुफरद पर करना है लेकिन वो मुफरद कभी हकीकतन होगा और कभी हुक्मन होगा, यानी पूरी जिन्स मुराद होगी। तो इंसान बोलकर आप एक इंसान का इरादा भी कर सकते हैं और पूरी जिनसे इंसान का इरादा भी कर सकते हैं, हां दो या तीन इंसानों का इरादा नहीं कर सकते क्योंकि ये आदद हैं, दो और तीन ना ये हकीकतन मुफरद हैं और ना ये हुक्मन मुफरद हैं, यानी ये पूरी जिन्स भी नहीं है
जी।
जिन्स बोलकर आप मुफरद हकीकी का भी इरादा कर सकते हैं और पूरी जिन्स का यानी मुफरद हुक्मी का भी इरादा कर सकते हैं, लेकिन दरमियान वाले जो आदद हैं यानी दो तीन या चार पांच, मसलन इंसान, इंसान बोलकर आप एक इंसान भी मुराद ले सकते हैं क्योंकि यह हकीकतन मुफरद है, और आप पूरे इंसान के अफराद भी मुराद ले सकते हैं कि यह पूरी एक ही जिन्स है, यानी यह मुफरद है हुक्मन, हमने हुक्म लगा दिए ये एक ही है, सारे इंसान क्या है, एक ही यानी एक ही जिन्स है। लेकिन अगर आप इसके जरिए दो या तीन या चार या पांच अफराद का इरादा करना चाहते हैं तो ये जो दो तीन चार हैं ये ना हकीकतन मुफरद हैं और ना हुक्मन मुफरद हैं, लिहाजा इनके लिए आप जिन्स का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसी तरह तलाक भी इसमें जिन्स है, इसमें जिन्स का इतलाक कलील और कसीर दोनों पर हो सकता है लेकिन आदद पर इतलाक नहीं, लिहाजा अंतित तलाक हो, देखो अब तलाक मस्तर ले आया और मस्तर इसमें जिन्स है, लिहाजा इसका इतलाक एक तलाक पर भी है, एक तलाक वो हकीकतन मुफरद है, और तलाक की इस पूरी जिन्स, पूरी तलाकें कितनी है एक खावन के पास ज्यादा से ज्यादा, तीन, तो पूरी जिन्स यानी तीन तलाकों का इरादा भी हो सकता है लेकिन दो का इरादा नहीं हो सकता, बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वलौ काला अंतित तलाक, और अगर खावन ने बीवी से अंतित तलाक कहा, अब इधर देखिए, इधर देखिए, अंतित तलाक कहा, मस्तर लाया है जी, मुझे बताइए तलाक वाके होगी या नियत जरूरी है, तलाक वाके हो जाएगी क्योंकि यह सरीह है और सरीह के अंदर किसी नियत की जरूरत नहीं, और अगर खावन ने अंतित तलाक के अंदर दो तलाकों की नियत की तो कितनी वाके होंगी, एक, क्योंकि दो तो अदद है भाई और जिंस के अंदर अदद का इहतमाल नहीं, या फर्द हकीकी होना चाहिए या फर्द हुक्मी यानी सारों का मजमुआ। और अगर उसने तीन की नीयत की यानी सारी जिंस का इरादा कर लिया तो फिर तीन वाकए हो जाएंगी क्योंकि ये सारी जिंस है
जी।
इसी तरह अगली मिसाल है, देखो मतन में अंतितालिकुन अत्तलाका, अंतितालिकुन अत्तलाका, ये मफूल मुतलक ले आए, मिलाकर पढ़ें अंतितालिकुन अत्तलाका
जी।
तो इस सूरत के अंदर भी अंतितालिकुन अत्तलाका, अगर खावन कोई नियत ना करे तो भी एक वाकए हो गई, क्योंकि जो अंतितालिकुन और आगे तलाक मस्तर क्या आ रहा है, मफूल मुतलक
जी।
और मफूल मुतलक किस लिए लाते हैं, मां कबल के अंदर ताकीद पैदा करता है, तो इसी अतलाक जो आखिर में आ रहा है इसने तालिकुन में ताकीद पैदा कर दी, और अंतितालिकुन से एक तलाक होती थी तो अंतितालिकुन तलाका, इसके अंदर भी एक ही तलाक वाकई होगी, और अगर खावन दो की नीयत करे तो भी एक ही होगी, क्योंकि अत्तलाक मस्तर मौजूद है और वो इसमें जिंस है लेकिन इसमें जिंस आदत पर दलालत नहीं करता, वो फर्दे हकीकी पर दलालत करता है या फर्दे हुक्मी यानी पूरी जिंस पर। तो वह जो है, लिहाजा अगर खावन ने तीन तलाकों की नियत की तो फिर यहां तीन तलाकें हो जाएंगी, क्योंकि लफ्ज क्या है, अंति तालिकुन अत्तलाका, तो तालिकुन सिर्फ होता फिर तो तीन की नियत नहीं हो सकती थी, लेकिन अत्तलाका मफूल मुतलक आगे मस्तर आ रहा है और मस्तर बोलकर तो पूरी जिंस का इरादा सही है, तो पूरी जिंस तलाक यानी तीनों का इरादा भी यहां हो सकता है
जी।
और फिर अगली मिसाल, ये तो क्या मिसाल थी, अंति तालिकुन अत्तलाका, अत्तलाक मस्तर, ये जो मफूल मुतलक है मारिफा है, इस पर अलिफ लाम है, अलिफ लाम को जरा हटा दें, अंतितालिकुन तलाकन, अंतितालिकुन तलाकन, तो अब यहां पर भी तलाकन मस्तर आ रहा है, लिहाजा अगर बगैर नियत के उसने कहा अंतितालिकुन तलाकन तो कितनी तलाकें होंगी, एक एक, किसी नियत वगैरह की जरूरत नहीं, और अगर दो की नियत की तो भी एक ही होगी क्योंकि मस्तर अदद पर दलालत नहीं करता, लेकिन अगर उसने तीन की नियत की तो चूंकि तलाकन मस्तर मौजूद है और तीन क्या है, पूरी जिंस है, तो पूरी जिंस का इरादा भी सही तो तीन भी हो जाएंगी। देखिए अब किताब पर कहते हैं वलव काला, और अगर खामन ने कहा अंति तलाकु, देखो बीवी पर तलाक मस्तर का हमल कर दिया
जी।
तो अंति तलाकु कहा और अंति तालिकुन तलाका, या अंति तालिकुन तलाका कहा और अंति तालिकुन तलाकन, ये लफ्ज उसने कहे यानी मफूल मुतलक को मारिफा लाए या नकिरा लाए, फइल्लम तकुन लहू नीयतुन, तो अगर खावन की कोई नीयत नहीं है, औ नवा वाहिदतन औ सिंतैनी, या खावन ने एक या दो की नीयत की है, फहिय वाहिदतुन रजईयतुन, तो इन सब सूरतों के अंदर एक रजई होगी, चाहे कोई नीयत ना करे फिर भी एक रजई, एक की नीयत करे फिर भी एक रजई, दो की नीयत करे फिर भी एक रजई होगी। वह इन नवा सलासन फसलासुन, और अगर खावन ने तीन की नीयत की है तो तीन तलाकें हो जाएंगी, वह वकू तलाक बिल लफ्जती सानियती व सालिसती जाहिरुन, और तलाक का वाक्य होना दूसरे और तीसरे लफ्ज से तो जाहिर है, भाई दूसरा लफ्ज कौन सा था, अंति तालिकुन अत्तलाका, मफूल मुतलक जो आगे लेकर आए और मारिफा लाए, और तीसरा लफ्ज उसमें मफूल मुतलक नकेरा लाए, अंति तालिकुन तलाकन, कहते हैं इसके अंदर तो तलाक का होना जाहिर है, क्यों, क्योंकि सिर्फ अंति तालिकुन से तलाक हो रही है, किससे, अंति तालिकुन, तो तालिकुन के साथ अगर मफूल मुतलक भी ले आएगा तो मफूल मुतलक इसी तालिकुन में ताकीद पैदा कर देगा, इसी को पक्का कर देगा, तो जब अकेले तालिकुन से बगैर ताकीद के एक तलाक हो रही है तो ताकीद की सूरत में तो बतरीके औला इससे एक तलाक होगी, बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वह वकू तलाक बिल लफ्जती सानियती व सालिसती जाहिरुन, और तलाक का वाक्य होना दूसरे और तीसरे लफ्ज से तो जाहिर है, لانه لو ذكر النعت وحده, इसलिए क्योंकि अगर खावन सिर्फ सिफत को जिक्र करता यानी انت طالق کہتا تو يقع به الطلاق, تو اسے طلاق واقع ہو جاتی. فاذا ذكره وذكر المصدر معه, تو جب خاون نے اس صفت کو بھی ذکر کیا اور اس کے ساتھ مصدر کو بھی ذکر کر دیا. وانه يزيده وكادتا, اور حال یہ ہے کہ مصدر جو ہے وہ اس صفت کو بڑھا دیتا ہے, وكادتا قوت کے اعتبار سے یعنی اس میں تاکید پیدا کر دیتا ہے. تو اولا, تو پھر اس صورت میں بطریق اولا طلاق ہوگی. جب صرف صفت سے طلاق ہو رہی ہے تو مصدر ساتھ ذکر کر دو تو مصدر نے اس میں تاکید پیدا کر دی تو اس میں بطریق اولا طلاق ہوگی. بھائی پھر ترجمہ دیکھ لیجئے, کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَوْ ذَكَرَ النَّعْتَ وَحْدَهُ يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ, اس لیے کیونکہ خاوند اگر صرف صفت ذکر کرتا یعنی انت طالقن کہتا تو اس سے بھی طلاق واقع ہو جاتی. فَإِذَا ذَكَرَهُ وَذَكَرَ الْمَصْدَرَ مَعَهُ, تو جب اس نے صفت بھی ذکر کی اور اس کے ساتھ مصدر کو بھی ذکر کیا, اولا, تو یہ بطریقے اولا طلاق واقع ہوگی. درمیان میں بتلا دیا وَأَنَّهُ يَزِيدُهُ وِكَادَةً, کہ جو مصدر ہے یہ اس صفت کو تاکید کے اعتبار سے بڑھا دیتا ہے یعنی اس میں تاکید پیدا کر دیتا ہے. وَأَمَّا وُقُوعُهُ بِاللَّفْزَةِ الْأُولَى, باقی پہلے لفظ سے طلاق کا واقع ہونا, پہلا لفظ کون سا تھا؟ انت الطلاق, تو عورت پر الطلاق مصدر کا لفظ بول رہا ہے کہ تو طلاق ہے, تو اس کا جواب دیں گے کہ بھئی بعض اوقات مصدر کا حمل ذات پر کر دیا جاتا ہے اور وہ مصدر بمانے صفت کے ہوتا ہے, جیسے زید عدل کس معنی میں ہے, زید عادل کے معنی میں ہے. تو کہتے ہیں وَأَمَّا وُقُوعُهُ بِاللَّفْزَةِ الْأُولَى, اور باقی طلاق کا واقع ہونا پہلے لفظ سے, فَلِأَنَّ الْمَصْدَرَ يُذْكَرُ وَيُرَادُ بِهِ الْاِسْمُ, اس لیے کیونکہ مصدر کو ذکر کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے اسم یعنی صفت کا ارادہ کیا جاتا ہے. يُقَالُ رَجُلٌ عَدْلٌ, کہا جاتا ہے رجل عدل اے عادل, تو یہ عدل کس معنی میں ہوتا ہے, عادل یعنی مصدر بول کر صفت کا ارادہ کیا جاتا ہے. فصار بمنزلت قوله انت طالق, تو یہ خاون کے انت طالق قول کے درجے میں ہو گیا. انت طلاق یہ کس درجے میں ہو گیا, انت طالق کے درجے میں, الطلاق طالق کے درجے میں ہو گیا. پھر دیکھیں انت طلاق یہ کس درجے میں ہوا, انت طالقن کے درجے میں ہوا, یہ معنی ہے. فصار بمنزلت قوله انت طالقن, تو خاوند کا قول انت طلاق یہ انت طالقن کے درجے میں ہو گیا. وعلى هذا لو قال انت طلاق يقع الطلاق به ايضا, بھائی پیچھے تو متن میں آیا تھا انت الطلاق, الف لام تھا اس پر, تو کہتے ہیں بھائی الف لام ہو چاہے نہ ہو دونوں کا حکم ایک ہی ہے. انت طلاق یہ بھی کس معنی میں, انت طالقن کے معنی میں, اور انت طلاقن یہ بھی کس معنی میں ہے, انت طالقن کے معنی میں ہے, تو دونوں سے طلاق ہوگی. وعلی ھذا, اور اسی بنا پر, لو قال, اگر خامن نے کہا انت طلاقن یعنی مصدر کا حمل کیا اور بیوی پر اور بغیر الف لام کے, تو یقع الطلاق به ایضا, تو اس کے ذریعے بھی طلاق واقع ہو جائے گی. ولا يحتاج فيه الى النيه, اور اس میں نیت کی احتیاج بھی نہیں ہوگی کیونکہ صریح لفظ ہے. ويكون رجعيا, اور طلاق بھی کون سی ہوگی, رجعی ہوگی. لما بینا انه صریح الطلاق, اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دیا کہ یہ صریح طلاق ہے. لغلبۃ الاستعمال فیہ, اس لیے کیونکہ یہ غالب الاستعمال ہے طلاق میں, یہ طلاق کا لفظ کیا ہے, طلاق میں غالب الاستعمال ہے, لہذا ان سب سے طلاق واقع ہو جائے گی. وتصح نیت الثلاثی, اور تین کی نیت بھی صحیح ہے. لان المصدر يحتمل العموم والكثرت, اس لیے کیونکہ مصدر جو ہے وہ عموم اور کثرت کا احتمال رکھتا ہے. لانه اسم جنس, اس لیے کیونکہ مصدر جو ہے وہ اس میں جنس ہے. فيعتبر بسائر اسماء الاجناس, لہذا اس کو قیاس کیا جائے گا باقی اسماء اجناس پر, اور باقی اسماء اجناس تو قلیل اور کثیر پر ان کا اطلاق ہوتا ہے, تو یہاں پر بھی مصدر ہے تو قلیل یعنی ایک اور کثیر یعنی ساری جنس جو ہے تین طلاقیں ان پر بھی اس کا اطلاق صحیح ہے, تو تین کی نیت صحیح ہوگی. तो कहते हैं फयो तबरु बिसाइरी अस्माइल अजनासी, तो इस मस्तर को कियास किया जाएगा बाकी अस्माए अजनास पर। फयतना वलुल अदना माहते मालिल कुल्ली, तो ये अदना को शामिल होगा माहते मालिल कुल्ली साथ कुल के एहतमाल के। अंति तलाकुन या अंति तलाकु, तलाक क्या है? मस्तर, और मस्तर का इतलाक कलील पर भी होता है और कसीर पर भी। तो कलील तो यकीनी है, कसीर का एहतमाल है। तो जब वो नियत कर देगा तो कलाम के एहतमाल की उसने नियत की है, कलाम में उसका एहतमाल भी था, लिहाजा वो तीन तलाकें हो जाएंगी। तो ये माना है फयतना वलुल अदना, तो ये अदना यानी एक को तो शामिल होगा ही यकीनी तौर पर, माहतेमालिल कुल्ली साथ कुल के एहतमाल के उसका भी एहतमाल है। वला तसहुनियतु सिनतैनि फीहा, और इसके अंदर दो की नियत सही नहीं है। खिलाफ अल जुफरा रहमहुल्लाह, बखिलाफ इमाम जुफर रहमहुल्लाह के, हुआ यकूल वो फरमाते हैं, इन सिनतैनि बाज़ुस सलासी। इमाम जुफर फरमाते हैं दो की नियत भी सही है। वो फरमाते हैं देखो, जब अंति तलाक के जरिए आप तीन की नियत कर सकते हैं और तीन तो कुल है और दो उसका जुज है, तो जब कुल की नियत की जा सकती है तो जुज की भी नियत की जा सकती है। हुआ यकूल वो फरमाते हैं, इन न सिनतैनि बाज़ुस सलासी, के दो जो है वो तीन का जुज है, उसका बाज है। फलम्मा सहत नियतुस सलासी, तो जब तीन की नियत सही है तो सहत नियतु बाज़िहा ज़रूरतन, तो उस तीन के बाज यानी उसके जुज की नियत भी सही होगी, ज़रूरतन यकीनी तौर पर। ज़रूरतन का माना बदीही के भी आप कर सकते हैं, बदीही वो चीज जिसमें दलील की जरूरत नहीं, जिसका सबको सबको पता है, यानी खूब जाहिर है। और जरूरत का माना यकीनी के भी आप कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो जो माना आपको बेहतर लगे। तो कहते हैं फलम्मा सहत नियतु सलासी, तो जब तीन की नियत सही है तो सहत नियतु बाजीहा, तो उसके बाज की नियत भी सही है, जरूरतन यकीनी तौर पर। वनहनु नकूलु, और हम कहते हैं, नियतु सलासी इन्नमा सहत लिकौ निहा जिनसन, के तीन की नियत जो है वो इसलिए सही है, लिकौ निहा जिनसन, के तीन जो है वो कुल जिन्स है, वो तलाक की कुल जिन्स है, पूरी जिन्स है। हत्ता लौकानतिल मरअतु अमतन तसिहु नियतु सिनतैनि बिअतिबारि मानल जिन्सियति, कहते हैं अगर औरत बांदी होती जिसको खामंद तलाक दे रहा है, और बांदी की तो तलाकें ज्यादा से ज्यादा कितनी हैं? दो। तो फिर इस सूरत में अंति तलाक से दो की नियत भी सही थी, लेकिन आदत होने के एतबार से दो की नियत सही नहीं थी, कुल जिन्स होने के एतबार से नियत सही थी। तो यह बात भी समझ में आई कि नहीं? हत्ता लौकानतिल मरअतु अमतन, यहां तक कि अगर ये औरत बांदी होती, तसिहु नियतु सिनतैनि, तो दो की नियत भी सही होती, बेअतिबारिल मानल जिन्सियति, जिन्स होने के माना के एतबार से, आदत के एतबार से नहीं भाई। अम्मा सिनतानि फी हक़िल हुर्रति अददुन, बाकी दो जो है आजाद औरत के हक में अददुन, ये अदद है। वल्लफ़्ज़ु ला यहतमिलुल अदद, और ये लफ्ज़ जो है ये अदद का इहतमाल नहीं रखता। हमने पहले बतला दिया कि अदद और मुफ़रद में क्या है, अदद और मुफ़रद एक दूसरे की जिद हैं, जो मुफ़रद है वो अदद नहीं, जो अदद है वो मुफ़रद नहीं है। वहां दाली अन्न मान तवहुदी मुरा अनफी अल्फाजिल वहदान, वहदान जमा है वाहिद की, वहदान किसकी जमा? वाहिद। तवहुद, तवहुद का माना है एक होना। मुराअन, जिसके रियायत रखी जाए, इसमें मफूल है। तो कहते हैं वहादा, और ये इसलिए, लिअन्न माना तवहुदी मुराअन, इसलिए क्योंकि एक होने के माना की रियायत रखी जाती है, फी अल्फाजिल वहदानी, मुफरद के अल्फाज में। जब लफ्ज मुफरद हो तो माना भी मुफरद ही होता है, लफ्ज मुफरद हो माना जमा नहीं हो सकता, तवज्जो है? तो मुफरद लफ्जों के अंदर मुफरद माना की रियायत रखी जाती है। तो लिहाजा जिन्स के जरिए आप फर्द हकीकी का भी इरादा कर सकते हैं और फर्द हुक्मी का। जिन्स का लफ्ज क्या है? मुफरद है ना, तो इसके लिए मुफरद ही का इरादा करना पड़ेगा। लेकिन मुफरद दो हैं भाई, एक मुफरद हकीकी यानी एक जो हकीकतन मुफरद है, और एक मुफरद हुक्मी यानी पूरी जिंस। भाई पूरी जिंस भी तो एक ही जिंस है भाई, तवज्जो है। तो लिहाजा तलाक का लफ्ज मुफरद है और मुफरद लफ्ज के अंदर मुफरद की रियायत रखी जाती है, लिहाजा इसके जरिए मुफरद ही मुराद होगा, चाहे वो मुफरद हकीकी हो चाहे मुफरद हुक्मी हो। लेकिन आदत जो है दो का इरादा यहां नहीं हो सकता। तो यह माना है वहाद अली अन्ना माना तवहुदी मुरा अनफी अल्फाजिल वहदानी, इसलिए क्योंकि मुफरद के माना की रियायत रखी जाती है मुफरद अल्फाज में, वदालिक बिल फर्दियती अबिल जिनसियती, और इस माना की रियायत जो है वो मुफरद होने के जरिए होगी अबिल जिनसियती या जिन्स होने के जरिए होगी। मुफरद लफ्जों में मुफरद माना की रियायत रखी जाती है और वो रियायत यहां तभी हो सकती है जब फर्दियत हो या जिंसियत हो, यानी एक फर्द मुराद लें या पूरी जिंस मुराद लें। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वदालिका बिल फर्दियती अबिल जिंसियती, और ये फर्द होने के जरिए होगा या जिंस होने के जरिए, यानी फिर ही रियायत हो सकेगी। वल मुसन्ना बिमा अजीलिम मिन हुमा, अजला या अजीलू का माना था जुदा होना, वल मुसन्ना बिमा अजीलिम मिन हुमा, और तस्निया तो इन दोनों से अलग है, इन दोनों से जुदा है, ना तो वो फर्द है ना वो जिंस है, तो वो मुराद नहीं ले सकते। एक फर्द या एक जिंस मुराद ले सकते हैं लेकिन तस्निया दो तलाकें यहां मुराद नहीं ले सकते। एक का इरादा भी सही क्योंकि वो फर्द हकीकी है, तीन तलाकों का इरादा भी सही क्योंकि वो पूरी जिंस है, लेकिन दो तलाकों का इरादा सही नहीं क्योंकि वो आदद है। भाई बात समझ में आ गई। वलौ काला अंति तालिकुनी तलाकु, दूसरी सूरत, ये वही मिसाल, वही मिसाल, अंति तालिकुन अत्तलाकु या अत्तलाका, जिस तरह भी बोल दें तवज्जो है, अगर अत्तलाकु पढ़ें अंति तालिकुन अत्तलाकु तो इसके लिए एक और मुब्तदा निकाल लें अंति तलाकु। तवज्जो है, किताब की इबारत पर नजर रखें, अंति तालिकुन अत्तलाकु, तो ये जो अत्तलाक है इससे पहले एक और अंति निकाल लें अंति तालिकुन अंति तलाकु, यूं भी हो सकता है। और आप चाहें तो अत्तलाका इसको मफूल मुतलक पढ़ें और मफूल मुतलक मंसूब होता है जी। तो अगर खावन ने यूं कहा अंति तालिकुन तलाका या अंति तालिकुन तलाकु, और फिर कहता है मैंने दो की नीयत की थी, हमने बताया दो की नीयत नहीं हो सकती, लेकिन अगर खावन कहता है अंति तालिकुन, इस तालिकुन से मैंने एक तलाक की नियत की और आगे अत्तलाका या अत्तलाकु उसके जरिए मैंने दूसरी तलाक की नियत की, तो कहते हैं फिर उसकी बात ठीक है जी। अब उसकी बात ठीक है क्योंकि तालिक ये भी सरीह और अत्तलाक ये भी क्या है सरीह, तो दो सरीह लफ्जों से दो तलाकों का इरादा सही हो गया जी। सिर्फ मस्तर होने के एतबार से दो का इरादा सही नहीं, लेकिन दो लफ्जों के एतबार से दो का इरादा सही है। फर्क समझ में आ रहा है जी। वलौ काला, और अगर खावन ने कहा अंति तालिकुनी तलाका, वकाला और फिर कहता है अरत तु बि कौली तालिकुन वाहिदतन, के मैंने अपने कौल तालिकुन के जरिए एक का इरादा किया, व बि कौली तलाकु उखरा और मैंने अपने कौल अत्तलाक के जरिए दूसरी तलाक का इरादा किया, युसद्दकु तो उसकी तस्दीक की जाएगी, लिअन्न कुल्ल वाहिदिन मिन्हुमा सालिहुन लिल ईकाई, इसलिए क्योंकि इन दोनों में से हर लफ्ज तलाक वाके करने की सलाहियत रखता है, तालिकुन से भी तलाक वाके होती है और तलाक से भी तलाक वाके होती है। फकअन्नहु काला, गोया के खावन ने यूं कहा अंति तालिकुन व तालिकुन, मस्दर भी किस माना में होता है तालिकुन के माना में, तो गोया दो दफा तालिकुन कहा, तो यह माना है फकअन्नहु काला, गोया के खावन ने कहा अंति तालिकुन व तालिकुन, फतकउ रजईयतानि इदा कानत मदखूलम बिहा, तो दो रजई तलाकें वाके हो जाएंगी अगर औरत मदखूल बिहा हुई, अगर औरत मदखूल बिहा यानी जिसके साथ खावन सोहबत कर चुका है, फिर दो रजई तलाकें वाके हो जाएंगी, खावन रुजू कर सकता है, लेकिन अब तमाम जिंदगी उसके पास एक ही तलाक का हक बाकी रहेगा भाई जी। और अगर औरत गैर मदखूल बिहा हुई और फिर कहता है अंति तालिकुन तलाका, इसके अंदर मैंने तालिकुन से एक की नीयत की है और अतलाक से दूसरी की नीयत की है, तो फिर याद रखो सिर्फ एक ही तलाक वाकई होगी। अगर औरत गैर मदखूल बिहा है जिसे खामन ने भी सोहबत नहीं की, वजह यह कि मैंने आपको बतलाया था कि गैर मदखूल बिहा एक ही तलाक से बायना हो जाती है और उस पर इद्दत भी नहीं है, वो आगे फौरन निकाह कर सकती है किसी और से, वो एक ही तलाक से क्या हो जाती है बायना। और खावन क्या कह रहा है आंती तालिकुन तलाका, तालिकुन से मैंने एक तलाक की नीयत की है और अब तलाक से दूसरी तलाक की नीयत की है, तो इस सूरत में जैसे ही पहली तलाक वाकई होगी साथ ही वो औरत बाइना हो गई, और अब जब खावन ने अगला लफ्ज कहा वो तो पहले से ही बाइना हो चुकी है, लिहाजा दूसरी तलाक लगव चली जाएगी। बात समझ में आ गई। आगे देखिए व इदा अज़ाफ़ अत्तलाक इला जुमलतिहा औ इला मा युअब्बरु बिही अनिल जुमलति वक़अत तलाक। सूरत मसला ये, अगर खावन तलाक की निस्बत पूरी औरत की तरफ करता है फिर भी तलाक वाकई हो जाएगी, और अगर खावन ने तलाक की निस्बत किसी ऐसे जुज की तरफ की जिससे पूरे बदन को ताबीर किया जाता है तो भी तलाक वाकई हो जाएगी। मसल खावन कहते हैं अंत तालिकुन, अभी अंत तो जमीर है और अंत जमीर के जरिए पूरा मुखातब मुराद होता है, उसकी पूरी जात मुराद होती है, यानी कि उसका बाजू मुराद है या सिर्फ पांव मुराद है या सिर्फ सर मुराद है, तो अंत जमीर के जरिए पूरा मुखातब मुराद होता है, तवज्जो है। तो जब कहा अंत तालिकुन तो तलाक की निस्बत पूरी औरत की तरफ की, लिहाजा तलाक वाकई हो गई। और अगर ऐसे उज्व की तरफ निस्बत की जिसके साथ पूरे बदन को ताबीर किया जाता है, जैसे अरबी जुबान में रासुन सर जो है सर, रास बोलकर पूरी जात मुराद लेते हैं, जैसे किसी कौम का सरदार आए तो कहते हैं जा रासुल कौमी, उन लोगों का सरदार मेरे पास आया था, तो रास बोलकर क्या मुराद लेते हैं पूरी जात। या इसी तरह वजहुन चेहरा, चेहरे के साथ भी पूरी जात मुराद लेते हैं, कहते हैं जा अनी वजहुल कौमी, उस कौम का चेहरा यानी सरदार मेरे पास आया था, तवज्जो है। इसी तरह रकबा है, रकबा से पूरी जात मुराद ली जाती है, कुरान में अल्लाह फरमाते हैं फतहरीरु रकबतिन, गर्दन का आजाद करना, तो गर्दन आजाद की जाती है या पूरा गुलाम या बांदी को आजाद किया जाता है, पूरे गुलाम या बांदी, तो रकबा बोलकर भी पूरी जात मुराद होती है। तो अगर तलाक की निस्बत पूरी औरत की तरफ की फिर भी तलाक वाकई हो जाएगी, और अगर तलाक की निस्बत ऐसे जुज की तरफ की जिससे पूरे बदन को ताबीर किया जाता है, पूरी जात को ताबीर किया जाता है, फिर भी तलाक वाकई हो जाएगी। लिहाजा खामन ने अगर अपनी बीवी से कहा वजहू की तालिकुन, तेरे चेहरे को तलाक है, तो तलाक वाकई हो जाएगी, क्योंकि वजहुन से क्या मुराद है पूरी जात। या रासू की तालिकुन, तेरे सर को तलाक है, तो भी तलाक हो जाएगी, क्योंकि रास बोलकर पूरी जात मुराद होती है। लेकिन अगर खामन कहता है यदू की तालिकुन, तेरे हाथ को तलाक है, नहीं भाई, हाथ बोलकर पूरी जात मुराद नहीं ली जाती, लिहाजा इस सूरत में हमारे नजदीक तलाक वाकई नहीं होगी। तो कहते हैं वह इदा अजाफत तलाक इला जुमलतिहा, और अगर खावन ने तलाक की निस्बत की इला जुमलतिहा उस पूरी औरत की तरफ, औ इला मा युअब्बरु बिही अनिल जुमलती, या ऐसे उज्व की तरफ के जिसके जरिए ताबीर किया जाता है पूरी जात को, वकात तलाक, तो तलाक वाकई हो जाएगी। लिअन्नहु उज़ीफ़ इला महल्लिही, इसलिए क्योंकि तलाक की निस्बत की गई है उसके महल की तरफ, वो पूरी औरत क्या है महल्ले तलाक है, जब वो महल्ले निकाह है तो वही महल्ले तलाक भी है, तो तलाक वाकई हो जाएगी। वज़ालिका मिस्लु अन यकूल, और वो ये कि मिसाल के तौर पर खावन यूं कहता है अंत तालिकुन, इसमें देखो तलाक की निस्बत पूरी औरत की तरफ की है, लिअन्ना ता अज़मीरुल मरअती, इसलिए क्योंकि ता जो है औरत की जमीर है, अंति तालिकुन, अंति तालिकुन, इस साहिब हिदाया फरमा रहे हैं कि इसके अंदर ये जो ता है ये औरत की जमीर है। भाई याद रखो ये जो जमीरें हैं अंत अंतुमान तुम अंति अंतुमान तुन, इसके अंदर इमाम फर्रा का मजहब ये है कि ये सारा लफ्ज जमीर है, अंता क्या है ये सारी जमीर है, अंतुमा ये सारी जमीर है, अंतुम ये सारा लफ्ज क्या है जमीर है, इसी तरह अंति और अंतुमा अंतुन्ना भी। जबकि उलमाए बसरा फरमाते हैं कि इनके अंदर, उलमाए बसरा फरमाते हैं कि इनके अंदर सिर्फ ये जो अन आ रहा है हमजा और नून अन, यह जमीर है, और आगे जो ता तुमा तुम ती तुमा तुन्ना हुरूफ साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, ये जमीरें नहीं हैं, ये सिर्फ मुखातब पर दलालत कर रही हैं कि वो मुफरद है, तस्निया है या जमा है, मुजक्कर है या मुअन्नस है, ये जमीरें नहीं। तो सिर्फ अन जमीर है, अंता अंतुमा अंतुम अंति अंतुमा अंतुन्ना, इसमें अन सिर्फ जमीर है और बाकी जो हरूफ साथ जुड़ रहे हैं वो सिर्फ मुफरत तस्निया जमा और मुजक्कर मुअन्नस पर दलालत कर रहे हैं। जबकि उलमाए कूफा का मजहब उलमाए बसरा के बरअक्स है। उलमाए बसरा ने क्या कहा था, अन जमीर है और ता सिर्फ मुफरत की अलामत है। बात समझ में आ गई। जबकि कूफा वाले इसके बरअक्स कहते हैं, वो कहते हैं अंता के अंदर ता जमीर है और अन जो है ये सिर्फ वैसे ही साथ जोड़ दिया गया है ताकि ता को सहारा मिल जाए। तो अंता में ता जमीर, अंतुमा में तुमा जमीर, अंतुम में तुम जमीर, अंति में ता जमीर, अंतुमा में तुमा जमीर और अंतुन्ना में तुन्ना जमीर है। यह उलमाए कूफा का मजहब है और साहिब हिदायत को उलमाए कूफा का मजहब पसंद है, इसीलिए फरमाया कि अंति तालिकुन के अंदर लि अन्न ता अजमीर उल मरअति, कि अंति के अंदर ये जो ता है ये औरत की जमीर है, पूरा लफ्ज ये जमीर नहीं, और सिर्फ अन ये भी जमीर नहीं, सिर्फ ता जमीर है। और नीज मैंने आपको बतलाया था भाई कि जब कोई कलीमा एक हर्फ पर मुश्तमिल हो, कलीमा किसे कहते हैं, बामाना लफ्ज, वो लफ्ज जिसका कुछ माना हो, कि जब कलीमा एक हर्फ पर मुश्तमिल हो तो और उसका आपने नाम लेना हो तो वो नाम लेते हैं जो हरूफ तहजी में होता है, जैसे बिस्मिल्लाह में ये बा जा रहा है, ये कलीमा है, इसका माना है, ये जोड़ के लिए आती है, तो इसको कैसे जिक्र करेंगे हुरूफ तहजी में, इसको क्या कहते हैं, बा, इसीलिए कहते हैं बिस्मिल्लाह के अंदर बा जार्रा है। इसी तरह अंति के अंदर उलमाए कूफा क्या फरमाते हैं, ये आखिर अन जो है सिर्फ सहारे के लिए है और आखिर में ये ता जो है ये जमीर है। देखो इसको साहिब हिदाया भी लि अन्न ता अजमीर उल मरअती, अंति के अंदर ये नहीं कह रहे कि ती जमीर है बल्कि क्या कह रहे हैं, ता जमीर है। तो कहते हैं वदालिका मिस्लु अन यकूला, और वो ये कि मसलन खावन यूं कहता है अंति तालिकुन लिअन्न ता अज़मीर उल मरअति, इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो ता है ये औरत की जमीर है। तो देखो पूरी जात की तरफ निस्बत कर दी तलाक की, अंति तालिकुन, पूरी औरत की जात की तरफ तलाक की निस्बत कर दी और इस सूरत में तलाक वाकई हो जाएगी, या ऐसे उज्व की तरफ निस्बत की जिससे पूरे बदन को ताबीर किया जाता है तब भी तलाक हो जाएगी। जैसे देखो अव यकूल, या खावन यूं कहता है रकबतु की तालिकुन, तेरी गर्दन को तलाक है, अव उनुकु की तालिकुन, या तेरी गर्दन को तलाक है, रकबा ये गर्दन का पीछे की जानिब हिस्सा है जिसको गुद्दी कहते हैं, कमर की जानिब जो गर्दन का हिस्सा है, और उनुक ये जो सामने गर्दन का हिस्सा है सीने की तरफ, तो रकबा के जरिए भी पूरी जात को ताबीर करते हैं, उनुक के जरिए भी क्या करते हैं, पूरी जात को ताबीर करते हैं, तो इससे तलाक हो जाएगी। तो कहते हैं अव यकूल, या खावन कहता है रकबा तू की तालिकुन, तेरी गर्दन को तलाक है, अव उनुक की तालिकुन, तेरी गर्दन को तलाक है, अव रसु की तालिकुन, या तेरे सर को तलाक है, अव रूह की तालिकुन, या तेरी रूह को, अव बदनु की, या तेरे बदन को, अव जसदु की, या तेरे जिस्म को, अव फर्जु की, या तेरी शर्मगाह को, अव वजहु की, या तेरे चेहरे को। तो ये सारे वो अल्फाज हैं जिनसे अरबी जुबान ने पूरी जात को ताबीर किया जाता है, तो इनसे तलाक वाकई हो जाएगी। लिअन्नहु युअब्बरु बिहिमा अन जमीअल बदनी, इसलिए क्योंकि ये जो आज़ा हैं इनके जरिए ताबीर किया जाता है पूरे बदन को, अम्मल जसदु वल बदनु फज़ाहिरुन, तो इनके अंदर जो जसद और बदन का लफ्ज है वो तो जाहिर है, जसद से भी पूरा जिस्म मुराद, बदन से भी पूरा जिस्म मुराद, वकदा गैरुहुमा, और इनके अलावा भी बाकी भी इसी तरह हैं। قال الله تعالى, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं फतहरीरु रकबतिन, कफारा यमीन में क्या फरमाते हैं फतहरीरु रकबतिन, तो रकबा बोलकर पूरी जात मुराद है। وقال, इसी तरह कुरान में अल्लाह फरमाते हैं फजल्लत आनाकुहुम, तो हो गई उनकी गर्दनें यानी उनकी जात, यहां आनाक से क्या मुराद है, उनकी जात मुराद है। وقال عليه الصلاة والسلام, और इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं لعن اللہ الفروج على السروج کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ان عورتوں پر على السروج جو زین پر سواری کریں. فروج جمع ہے فرج کی عورت کی شرمگاہ اور مراد صاحبت الفروج ہیں, فروج والیاں یعنی عورتیں مراد ہیں. اور سروج جمع ہے سرج کی, یہ گھوڑے کی زین جو ہے گھوڑے پر بیٹھنے کے لیے جو رکھی جاتی ہے اس کو سرج کہتے ہیں. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لعن اللہ الفروج کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو الفروج اے صاحبت الفروج ان شرمگاہ والیوں پر یعنی ان عورتوں پر علی السروج جو کس پر سواری کرتی ہیں, گھوڑے پر سواری کرتی ہیں, جو زین پر سواری کرتی ہیں. توجہ ہے. تو علماء محشی حضرات فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ہمیں ان الفاظ کے ساتھ نہیں ملی, یہ حدیث ہمیں ان الفاظ کے ساتھ نہیں ملی. ہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک حدیث ہمیں ملی, اس حدیث میں ہے نہا زوات الفروجی ان یرکبن السروج. نہا زوات الفروجی, حضور علیہ السلام نے فروج والیوں کو منع کیا ان یرکبن السروج کہ وہ زینوں پر سواری کریں. حضور علیہ السلام نے فروج والیوں کو یعنی عورتوں کو منع کیا ان یرکبن السروج کہ وہ زینوں پر یعنی گھوڑوں پر سواری کریں. تو بہرحال اس حدیث کے اندر زوات الفروج کا لفظ آ رہا ہے, فروج کا اطلاق عورتوں پر نہیں کیا گیا بلکہ عورتوں کو زوات الفروج کہا گیا ہے. جبکہ صاحب ہدایہ جو حدیث ذکر فرما رہے ہیں اس کے اندر تو فروج کا اطلاق کیا گیا ہے, کس پر؟ عورتوں پر. تو محشی حضرات فرماتے ہیں کہ ان الفاظ کے ساتھ ہم یہ حدیث نہیں ملی کہ جس میں فروج کا اطلاق پوری عورت پر کیا گیا ہو. تو بہرحال فرج بول کر پوری عورت کا ارادہ کیا جاتا ہے عربی زبان میں. تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں وقال علیہ الصلاۃ والسلام, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لعن اللہ الفروج علی السروج کہ اللہ تعالی لعنت فرماتے ہیں ان عورتوں پر جو گھوڑوں پر سواری کرتی ہیں. یاد رکھو علماء فرماتے ہیں کہ عورت گھوڑے پر سواری کر سکتی ہے, ضرورت اور حاجت کی وجہ سے عورت گھوڑے پر سواری کر سکتی ہے. اور یہ جو حدیث میں بالخصوص جن کے پر لعنت آئی ہے, جن کو منع کیا گیا گھوڑے پر سواری کرنے سے, اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جو مردوں کو اپنا آپ دکھانے کے لیے گھوڑوں پر سواری کرتی ہیں یا مردوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے گھوڑوں پر سواری کرتی ہیں, تو ان کے بارے میں لعنت آئی ہے یا ان کو منع کیا گیا ہے حدیث میں. بھائی آگے دیکھیے وَيُقَالُ فُلَانٌ رَأْسُ الْقَوْمِ وَوَجْهُ الْعَرَبِ اور عربی زبان میں کہتے ہیں فُلَانٌ رَأْسُ الْقَوْمِ, فلاں قوم کا سردار ہے. دیکھو رأس کا اطلاق پوری ذات پر ہو رہا ہے. وَوَجْهُ الْعَرَبِ اور فلاں جو ہے عرب کا چہرہ ہے یعنی عرب کا سردار ہے. دیکھو وجھن کا اطلاق پوری ذات پر ہو رہا ہے. وَهَلَكَ رُوحُهُ بِمَعْنَى نَفْسُهُ اور عربی میں کہتے ہیں اس کی روح ہلاک ہو گئی یعنی اس کی ذات ہلاک ہو گئی. تو روح بول کر پوری ذات مراد لیتے ہیں. وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ الدَّمُ فِي رِوَايَةٍ اور اسی قبیل سے دم بھی ہے. فی روایتین ایک روایت کے مطابق دم جو ہے, دم اگر خاون یوں کہتا ہے دم کی طالقون تیرے خون کو طلاق ہے تب بھی طلاق ہو جائے گی ایک روایت کے مطابق, کیونکہ دم کا اطلاق بھی کہتے ہیں پوری ذات پر ہوتا ہے. یقالو دیکھو یقالو کہا جاتا ہے دمہ حدرن اس کا خون رائگاں چلا گیا. دمہ حدرن اس کا خون رائگاں چلا گیا یہ تب کہتے ہیں جب کسی کو قتل کرنے کی وجہ سے نہ تو قصاص آئے اور نہ دیت. تو عربی میں کیا کہتے ہیں کہ دمہ حدرن اس کا خون رائگاں ہے یعنی نہ اسے قصاص آیا ہے اور نہ دیت آئی ہے. مثلا ایک شخص مرتد ہو گیا بھائی اور جیسے مرتد ہوا دوسرے شخص نے اس کو قتل کر دیا, تو یاد رکھو جس نے قتل کیا ہے قاتل جو ہے نہ اس پر قصاص آئے گا اور نہ دیت, کیونکہ ارتداد کی وجہ سے وہ شخص مباح الدم ہو چکا تھا, اس کی جان اور مال محفوظ نہ رہے. اب کوئی بھی اس کو قتل کر دے تو قصاص یا دیت نہیں آئے گی. تو کہیں گے دمہ حدرن اس کا خون رائگاں ہے. توجہ ہے. تو دم بول کر بھی دیکھو اس کی پوری ذات یعنی اس کی جان رائگاں چلی گئی, اس کی ذات ضائع چلی گئی. तो जात, पूरी जात मुराद है। वमिन हु नफ्स, और इसी से नफ्स का लफ्ज भी है, वह हुआ जाहिर, और यह जाहिर है। खावन बीवी से कहता है नफ्स की तालिकुन, तेरी जात को तलाक है, तो इस सूरत में भी तलाक हो जाएगी। وكذلك ان طلق جزءا شائعا مثل ان يقول نصفك او ثلثك طالق, याद रखो عند الاحناف अगर औरत के ऐसे जुज को तलाक देता है जो पूरे बदन में फैला हुआ है तो इस सूरत में भी तलाक हो जाएगी। मसलन कहता है نصفك طالق, तेरे نصف को तलाक है। अब यह نصف तो पूरे बदन में फैला हुआ है, हर हर जुज का نصف, उंगली का भी نصف, नाखून का भी نصف, हाथ का भी निसफ, पांव का भी निसफ, सर का भी निसफ, आंख का भी निसफ, नाक का भी निसफ, चेहरे का भी निसफ, ये तो पूरे बदन में फैला हुआ है, लिहाजा इससे भी तलाक हो जाएगी। या तेरे बदन के तीसरे हिस्से को तलाक, या तेरे बदन के सौवें हिस्से को तलाक, तो भी तलाक हो जाएगी, क्योंकि सौवां हिस्सा पूरे बदन में फैला हुआ है, हर हर उज्व का सौवां हिस्सा, तवज्जो है, तो इसे तलाक हो जाएगी। وكذلك, और इसी तरह है इन तल्लक जुज अन शाएअन, अगर खामन ने तलाक दी जुज अन ऐसे जुज को, शाएअन जो फैला हुआ है यानी पूरे बदन में, मिसलु अन यकूला, मिसाल के तौर पर खावन यूं कहता है निसफु की औ सुलुसु की तालिकुन, के तेरे निसफ या तेरे सुलुस को तलाक है, लिअन्नल जुज अशाएअ महलुन लिसाइर तसर्रुफाति, इसलिए क्योंकि वो जुज जो फैला होता है महलुन लिसाइर तसर्रुफाति, वो बाकी तसर्रुफात का महल है। भाई गुलाम कोई बेचता है, बाज़ोकात निसफ बेचता है, बाज़ोकात सुलुस बेचता है, बाज़ोकात रुबू बेचता है, तो देखा ये जो जुज जो फैला हुआ है इसमें और तसर्रुफात भी हो रहे हैं। किसी को आप बेचना चाहे तो निसफ या सुलुस बेच सकते हैं, किसी को आप हिबा करना चाहे तो निसफ या सुलुस हिबा कर सकते हैं। मालूम हुआ यह जो जुज फैला हुआ है यह महल है बाकी तसर्रुफात का। जब इसमें बाकी तसर्रुफात हो सकते हैं तो तलाक भी एक तसर्रुफ है, वो भी हो सकता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि बाकी तसर्रुफ तो उतने में ही रहेगा। सुलुस बेचा है तो सुलुस का ही मालिक होगा मुश्तरी, लेकिन तलाक के एतबार से इस तरह तकसीम नहीं हो सकती, लिहाजा फिर पूरी जात को ही तलाक हो जाएगी। बात समझ में आ गई, तलाक में ऐसा नहीं हो सकता कि उसका निसफ को तलाक हो और निसफ को तलाक न हो, फिर पूरे ही औरत को ही तलाक हो जाएगी। तो कहते हैं लिअन्न अल-जुज अश्शाइअ महलुन लिसाइर तसर्रुफाति, इसलिए क्योंकि वो जुज जो फैला हुआ हो वो बाकी तमाम तसर्रुफात का महल है, कल बै वगैरह ही, जैसे कि बै वगैरह है, फकदा यकूनु महलन लितलाकी, तो इसी तरह यह तलाक का भी महल होगा, इल्ला अन्नहु ला यतजस्सअ फी हक़ तलाकी, मगर यह कि यह जुज तकसीम नहीं होगा तलाक के हक में, यानी सिर्फ इसी पर तलाक है, ऐसा नहीं होगा। फयसबुतु फिल कुल जरूरतन, तो तलाक सारी औरत में ही साबित हो जाएगी, जरूरतन यकीनी तौर पर। वलौ काल यदु की तालिकुन और रिजलू की तालिकुन लम यकाइ तलाक, भाई मैंने बताया था अगर ऐसा जुज जिक्र किया जिसके साथ पूरी जात को ताबीर नहीं किया जाता तो फिर तलाक नहीं होगी। मसलन औरत से कहता है यदु की तालिकुन, तेरे हाथ को तलाक है, और रिजलू की तालिकुन, तो यद और रिजल के साथ तो पूरी जात को ताबीर नहीं किया जाता, लिहाजा इससे तलाक भी वाक नहीं होगी। जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं नहीं, इससे भी तलाक हो जाएगी, इससे भी तलाक हो जाएगी। तो कहते हैं वलौ काला यदु की तालिकुन और रिजलू की तालिकुन, और अगर खावन ने बीवी से कहा तेरे हाथ को तलाक है और रिजलू की तालिकुन, या तेरे पांव को तलाक है, लम यकाइ तलाक, तो तलाक वाक नहीं होगी। वकाल जुफर व शाफियो रहमहुमल्लाह तआला यकाउ, इमाम जुफर और इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं इस सूरत में भी तलाक वाक हो जाएगी। वकदल खिलाफ फी कुल्ली जुज इम मुअय्यन ला युअब्बरु बिही अन जमीउल बदनी, वकदल खिलाफ, और इसी तरह इख्तिलाफ है, फी कुल जुज इम मुअय्यन, हर उस मुअय्यन जुज में, ला युअब्बरु बिही अन जमीउल बदनी, जिसके साथ सारे बदन को ताबीर नहीं किया जाता, उन सब में हमारा और शवाफिया का इख्तिलाफ है। लहुमा, इमाम जुफर और इमाम शाफी रहमुल्ला की दलील यह है कि अन्नहु जुज उम मुतमत्तउन बिअक्दिन निकाही, कि ये ऐसा जुज है मुतमत्तउन जिसे नफा उठाया जाता है बिअक्दिन निकाही, अक्दिन निकाह के जरिए। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं आकदे निकाह की वजह से औरत का हाथ या पांव भी मर्द के लिए हलाल हो गया। जब पूरी औरत मर्द के लिए हलाल तो उसका हाथ और पांव भी क्या हो गए हलाल। तो मालूम हुआ यह ऐसा जुज है जिससे खावंद नफा उठा सकता है, यानी शहवत से उसके हाथ को भी हाथ लगा सकता है, शहवत से उसके पांव को भी हाथ लगा सकता है। तो मालूम है ये ऐसा जुज है जो इस खावंद के लिए हलाल हो गया, वो इससे नफा उठा सकता है। और जिस जुज का भी ये हाल है जो निकाह की वजह से हलाल हुआ है तो वो तलाक की वजह से हराम भी किया जा सकता है। तवज्जो है, देखिए भाई लहुमा उनकी दलील ये है कि अन्नहु जुज उम मुतमत्तउन बिअक्दिन निकाही, कि ऐसा जुज है जिससे नफा उठाया जाता है अक्द निकाह की वजह से। वमा हादा हालुहू, और जिस उज़ का ये हाल हो, जिस जुज का ये हाल हो, यकूनु महल्लन लिहुक्म निकाही, तो वह महल होगा हुक्म निकाह का भी, हुक्म निकाह का वो महल है। फयकून महल लितलाकी, तो ये तलाक का भी महल होगा। जिस जुज से फायदा उठाना जायज, मालूम हो वो महल निकाह भी है, और जब वो महल निकाह है तो फिर महल तलाक भी होगा। फयसबुतुल हुक्म फीही, तो इसके अंदर भी हुक्म यानी तलाक साबित हो जाएगी। कजियतन लिल इजाफती, कजियह का माना है हुक्म और मुख्तजा, हुक्म और मुक्तजा। तवज्जो है, कजियत उनका क्या माना यहां, हुक्म और मुक्तजा, और इजाफत का माना है निस्बत। देखो खावंद ने बीवी की तरफ निस्बत की है, यद की तालिक उन, यद की निस्बत किसकी तरफ की है, औरत की तरफ, यद की तालिक उन, तेरे हाथ को तलाक है। तो यहां पर इस औरत के हाथ को तलाक दे रहा है, और ये हाथ तो इस आदमी के लिए हलाल था, लिहाजा ये क्या हो जाएगा, इसको तलाक हो जाएगी। और जब इस हाथ को तलाक होगी तो पूरी औरत को ही तलाक हो जाएगी, पूरी औरत को ही तलाक हो जाएगी। दलील समझ में आ रही है? तो कहते हैं फयस बुतुल हुक्म फीही, तो उस जुज के अंदर तलाक वाला हुक्म साबित हो जाएगा। कजियतन लिल इजाफती, इस इजाफत के मुक्तजा के तौर पर, ये जो औरत की तरफ निस्बत की थी यदु की, देखो यद की इजाफत कर रहा है काफ जमीर की तरफ, तो ये जो इजाफत कर रहा है इस इजाफत के मुक्तजा ये है कि इसके हाथ को अब तलाक हो गई, क्योंकि इसी औरत के हाथ को तुमने तलाक दी है जो तुम्हारी बीवी है, तो इसके हाथ को क्या हो गई तलाक। तो ये जो आपने इसके हाथ की तरफ तलाक की निस्बत की है, इसका तकाजा यह है कि इस हाथ को क्या होनी चाहिए, तलाक होनी चाहिए। यह माना है फयसबुतुल हुक्म फीही कजियतन लिल इजाफती, तो उस जुज के अंदर भी तलाक का हुक्म साबित हो जाएगा निस्बत के मुक्तजा के तौर पर, कि निस्बत जो तुमने किया उसका यही तकाजा है। सुम यसरी इलल कुल्ली, तो इधर देखो तलाक का हुक्म सिर्फ किस में आया, औरत के हाथ में, मसलन उसने कहा था यदु की तालिकुन, तो जब हाथ के अंदर तलाक आ गई, हाथ उस आदमी पर हराम हुआ, तो फिर ये हुरमत सिरायत कर जाएगी और सारी औरत आदमी पर हराम हो जाएगी, सारी बीवी इंसान पर हराम हो जाएगी। ये माना है सुम यसरी इलल कुल्ली, फिर ये जो तलाक का हुक्म है यानी हुरमत वाला, ये सिरायत कर जाएगा इलल कुल्ली पूरी औरत की तरफ। कमा फिल जुज इस शाई, जैसे कि उस जुज में था जो फैला हुआ था। ए अहनाफ, आप कहते थे किस कोई शखावन बीवी से कहता है निस्फ की तालिकुन, तो आपके नजदीक निसब को तलाक होती थी और फिर वो तलाक सिरायत कर जाती थी, पूरी औरत को तलाक होती थी, अभी आपने हमें बताया। तो यहां पर भी जब इस औरत के हाथ को तलाक हो गई तो ये तलाक सिरायत कर जाएगी और सारी औरत ही मुतल्लका हो जाएगी, वो सारी औरत ही खावन पर हराम हो जाएगी। तो ये माना है सुम यसरी इलल कुल्ली, फिर ये तलाक का हुक्म सिरायत कर जाएगा सारी औरत की तरफ। कमा फिल जुज इस शाई, जैसे कि उस जुज के अंदर था जो फैला हुआ था। बिखिलाफ इमा ईदा उजीफा, ये के एतराज का जवाब दे रहे हैं, दलील चल रही है इमाम जुफर और इमाम शाफई रहीमहुमल्लाह की, वो क्या फरमाते हैं, हाथ या पांव को या कोई किसी ऐसे जुज को तलाक देंगे तो उसमें तलाक का हुक्म आ जाएगा और फिर सारे बदन की तरफ सिरायत कर जाएगा। तो इस पर इश्काल होता है कि आप लोगों के नजदीक हाथ को तलाक दें तो वो पूरे बदन में सिरायत कर जाता है, तो फिर तो हाथ के साथ निकाह भी जायज होना चाहिए। एक शख्स एक औरत से कहता है मैंने तेरे हाथ से निकाह किया, और वह औरत कहती है मैंने कबूल किया, तो फिर यह हाथ क्या हो गया, हलाल। जब हाथ हलाल हुआ तो यह अब हिल्लत सिरायत करके पूरे बदन में आनी चाहिए और पूरी औरत हलाल हो जानी चाहिए। लेकिन आप लोगों के नजदीक भी हाथ के साथ अगर निकाह किया जाए तो निकाह नहीं होता, यानी वो हिल्लत सिरायत नहीं करती पूरे बदन में। तो यह अजीब बात है, तलाक की हुरमत थी वो तो हाथ से पूरे बदन में फैल जाती थी, लेकिन निकाह की हिल्लत हाथ से पूरे बदन की तरफ सिरायत नहीं कर रही। तो उसका वो जवाब देते हैं कि ए अहनाफ, आपके नजदीक भी तो जाब्ता यही है कि हुरमत और हिल्लत जब जमा हो जाएं तो हुरमत को तरजीह होती है। एक चीज में एक दलील से पता चल रहा है यह हलाल है, दूसरी दलील से पता चला यह हराम है, तो हराम को तरजीह दी जाती है क्योंकि उसमें एहतियात ज्यादा है। मसला एक चीज है, उसके बारे में दो दलीलें आ गई, एक दलील से पता चला यह हलाल है, हमने फतवा दे दिया यह हलाल है, लेकिन हो सकता है हकीकत में यह इंदल्ला हराम हो, क्योंकि इसके हराम होने की भी तो दलील आ रही है। एक ही चीज की दोनों दलीलें आ रही हैं, हलाल होने की भी हराम होने की भी, हमने किसको तरजीह दे दी, हलाल होने की दलील को हमने तरजीह दे दी, हमने कहा यह चीज हलाल है, लेकिन हो सकता है इंदल्ला यह हराम हो, हकीकत में यह हराम हो, तो देखो अब हमारे इस फतवे की वजह से एक हराम चीज को इस्तेमाल करना लाजिम आएगा। लेकिन अगर इसके बजाय हम इसके हराम होने का फतवा देते, दलीलें दोनों हैं लेकिन हम फतवा क्या देते, हराम होने का, तो हमने तो हराम होने का फतवा दे दिया, हो सकता है यह चीज हकीकत में हलाल हो, तो क्या खराबी लाजिम आई, ज्यादा से ज्यादा एक हलाल चीज के इस्तेमाल से हम रुक गए और तो कोई खराबी नहीं। लेकिन अगर हम हलाल होने का फतवा देंगे तो हो सकता है वो चीज क्या हो, हराम, तो एक हराम चीज का इस्तेमाल लाजिम आएगा। तो हजाबता क्या है कि हिल्लत और हुरमत जमा हो जाए तो किसको तरजीह देते हैं, जानिब हुरमत को तरजीह दी जाती है। लिहाजा यहां पर भी तलाक के मसले में हुरमत आई थी, लिहाजा एक जुज भी हराम हुआ तो वह हुरमत सिरायत कर गई, सारा बदन सारी औरत ही क्या हो गई, हराम, क्योंकि हुरमत को तरजीह होती है। लेकिन हिल्लत जब एक हाथ में हिल्लत आई तो यह हिल्लत सारे बदन पर सिरायत नहीं करेगी, क्योंकि सारा बदन तो हराम है, तो वह हुरमत जो है इस हिल्लत पर गालिब आ जाएगी, तो लिहाजा यह औरत हलाल नहीं होगी। भाई तो कहते हैं बेखिलाफ इमा ईदा उजीफ इलैही निकाहू, बखिलाफ इसके के जब किसी ऐसे उजू की तरफ निकाह की निस्बत कर दी जाए, लिअन्न तअद्दिया मुमतनेउन, इसलिए क्योंकि इसका मुतअद्दी होना मुमतनेअ है, यह सिरायत नहीं करेगा। इदिल हुरमतु फी साइरिल अज्जाई, इसलिए क्योंकि बाकी के तमाम अज्जा में जो हुरमत है, तगलिबुल हिल्ला फी हादल जुज़ी, वो जो इस जुज के अंदर हिल्लत है उस पर गालिब आ जाएगी। निकाह किया है सिर्फ हाथ से तो निकाह हाथ में हिल्लत आई, लेकिन बाकी सारा बदन तो क्या है, हराम, तो वो हुरमत इस हिल्लत पर गालिब आ जाएगी और ये भी फिर क्या बन जाएगा, उसी तरह हराम हो जाएगा। ये माना है लिअन्न तअद्दिया मुमतनेउन, इसलिए क्योंकि इस हिल्लत का मुतअद्दी होना मुमतनेअ है। इदिल हुरमतु फी साइरिल अज्जाई, इसलिए क्योंकि बाकी अज्जा के अंदर जो हुरमत है, तगलिबुल हिल्ला फी हादल जुज़ी, वो इस जुज के अंदर जो हिल्लत है उस पर वो हुरमत गालिब आ जाएगी। वफी तलाकिल अमरु अलल कल्बी, और तलाक में तो मामला अलल कल्बी इसके बरअक्स है, वहां तो हुरमत थी एक जुज में, और हुरमत तो हिल्लत पर गालिब आ सकती है, तो सारा बदन ही यानी सारी औरत ही हराम हो जाएगी। अब हमारी दलील आ गई वलना, और हमारी दलील यह है कि अन्नहु अज़ाफ़त तलाक इला गैर महल्लिही, कि खामन ने जब यूं कहा यदु की तालिकुन या रिजलु की तालिकुन, तो खामन ने तलाक की निस्बत गैर महल की तरफ कर दी। किसकी तरफ, तलाक का महल वो औरत तो है लेकिन उसका हाथ या पांव नहीं। भाई तो लिहाजा वलाना, और हमारी दलील यह है कि अन्नहु अज़ाफ़ अत्तलाक इला गैरी महल ही, कि खामन ने तलाक की निस्बत की है गैर महल की तरफ, यानी वो तलाक का महल नहीं है। फयलगु, लिहाजा वो तलाक लग्व हो जाएगी, बेकार चली जाएगी। कमा इदा अज़ाफ़हु इला रीकिहा औ ज़ुफ़रिहा, जैसे कि खावन तलाक की निस्बत करे इला रीकिहा, उस औरत के लुआब की तरफ, कि तुम्हारे लुआब को तलाक है, औ ज़ुफ़रिहा, या उसके नाखून की तरफ, कि तुम्हारे नाखून को तलाक है। तो देखो लुआब और नाखून ये तो तलाक का महल नहीं, लिहाजा जैसे इसके अंदर तलाक लग्व चली जाती है, इसी तरह यद और रिजल के अंदर भी तलाक जो है वो लग्व चली जाएगी, क्योंकि वो तलाक का महल नहीं। वहादा, और ये इस वजह से, अब वजह जिक्र कर रहे हैं कि हाथ और पांव तलाक का महल क्यों नहीं है, हमने तो कह दिया ये तलाक का महल ही नहीं, तो वजह जिक्र कर रहे हैं, कहते हैं वहादा, और ये इस वजह से, लिअन्ना महल तलाकी मा यकूनु फीहिल कैदु, कि महल तलाक वो चीज होगी जिसमें कैद हो, कैद निकाह हो, जिसमें कैद यानी कैद निकाह मौजूद हो। लिअन्नहु युंबिउ अन रफ़इल कैदी, इसलिए क्योंकि तलाक ये खबर देती है, अन रफ़इल कैदी, कैद के उठाने का, तलाक के जरिए क्या किया जाता है, कैद निकाह को उठाया जाता है, तो तलाक वहीं आएगी जहां कैद निकाह भी पाई जाए। तवज्जो है, तलाक का क्या माना है, निकाह को उठाना, यानी रफ़ कैद, कैद को उठाना, तो रफ़ कैद वहीं हो सकता है जहां कैद तो पाई जाए, जहां कैद ही नहीं है वहां रफ़ कैद का क्या माना। तो कहते हैं لأنه ينبئ عن رفع القيد, इसलिए क्योंकि तलाक जो है वो रफ कैद की खबर देती है। वला कैद फी اليد, और हाथ में तो कोई कैद नहीं है, पूरी औरत में तो कैद निकाह मौजूद है, हाथ में कोई अलग कैद तो मौजूद नहीं कि आप जिसको तलाक के जरिए उठा रहे हैं। तवज्जो है, या यूं कहो, यूं कहो, इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते थे कि हाथ हराम हुआ तो पूरी औरत हराम, और हाथ हलाल होगा तो पूरी औरत हलाल नहीं होगी, क्योंकि हुरमत गालिब आ जाती है। तवज्जो है, हम कहते हैं ये जो औरत के हाथ और पांव से भी नफा उठाना हलाल हो गया, खावंद शहवत से इनको हाथ लगा सकता है, वो इस वजह से कि हाथ और पांव कुल औरत के ताबिया हैं, तो जब कुल औरत के अंदर निकाह आया तो तब अन हाथ और पांव में भी निकाह आ गया, वो भी हलाल हो गए। तो हाथ और पांव जो हलाल हुए हैं खावंद के लिए, वो असलन हलाल हैं या तबअन, वो तबअन हलाल हुए हैं, असल तो ये औरत हलाल हुई है, जब औरत हलाल हुई तो इसके सारे आज़ा भी क्या हो गए, हलाल। तो मालूम हुआ कि हाथ और पांव में जो हिल्लत आ रही है वो तबअन आ रही है, हाथ और पांव में जो हिल्लत आ रही है वो तबान आ रही है, मालूम हाथ और पांव ताबिया हैं, लिहाजा इनको असल नहीं बनाया जा सकता कि आप कहें इनको तलाक दे दी तो सारी औरत को ही तलाक हो गई, ये तो आपने हाथ और पांव को असल बना दिया भाई, जब निकाह के अंदर ये ताबे थे तो तलाक में भी क्या रहेंगे, ताबिया ही रहेंगे, ये असल नहीं हो सकते। दलील समझ में आ गई, फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं वहादा ली अन्ना महल तलाकी मा यकून फीहिल कैदू, इसलिए क्योंकि महल तलाक वो उज्व होगा जिसके अंदर कैद निकाह हो। ली अन्नहु युंबी उन रफ़इल कैदी, इसलिए क्योंकि तलाक जो है वो रफ़ कैद की खबर देती है। वला कैद फिल यदी, और हाथ में तो कोई अलैदा कैद नहीं है। वलिहादा ला तसिहु इज़ाफ़तुन निकाह इलैही, और इसीलिए निकाह की निस्बत भी इसकी तरफ सही नहीं है, निकाह की निस्बत भी सही नहीं, मैं तेरे हाथ से निकाह करता हूं, नहीं भाई इससे वाक़े नहीं होगा, क्योंकि हाथ जो हलाल होता है वो तबान हलाल होता है, और अगर आप हाथ से निकाह को पूरा निकाह करार दे दें तो फिर तो गोया आपने हाथ को असल बना दिया भाई। तो ये कहते हैं वलिहादा ला तसिहु इज़ाफ़तुन निकाह इलैही, और इसीलिए इस जुज़े मुअय्यन की तरफ निकाह की इजाफत सही नहीं है। बिखिलाफिल जुज़ इश्शाई, बखिलाफ वो जुज़ जो फैला हुआ है। लिअन्नहु महल्लुल निकाह इंदना, क्योंकि वो हमारे नजदीक महल निकाह है। हत्ता तसिहु इज़ाफ़तुहु इलैही, यहां तक कि उसकी तरफ निकाह की इजाफत भी सही है, इसलिए क्योंकि ये जुज जो है, ये जो जुजे शाये है, जो फैला हुआ जुज है, ये हमारे नजदीक महल्ले निकाह भी है, जब ये महल्ले निकाह है तो महल्ले तलाक भी होगा, निसफ या सुलुस से निकाह करेगा तो पूरी औरत से निकाह हो जाएगा, क्योंकि वो निसफ या सुलुस पूरे बदन में फैला हुआ है। तो जब उसके साथ निकाह सही है तो उस निसफ या सुलुस को तलाक भी सही है। जबकि जुज़े मुअय्यन कोई हाथ या पांव है, जब सिर्फ उससे निकाह किया जाए तो निकाह सही नहीं है, तो उसको तलाक देना भी सही नहीं है, उसे तलाक वाकई नहीं होगी। ये माना है बिखिलाफ इल जुज इशाई, बखिलाफ उस जुज के जो फैला हुआ है, लिअन्नहु महल्लुन लिन्निकाह इंदना, इसलिए क्योंकि वो हमारे नजदीक वो जुज़े शाए जो है वो महल निकाह है हमारे नजदीक, हत्ता तसिहु इज़ाफतुहु इलैही, यहां तक कि उसकी तरफ निकाह की निस्बत भी सही है। भाई याद रखिए यहां पर भी यह हत्ता नसब नहीं देगा, क्योंकि हत्ता के नसब के लिए मैंने बतलाया था दो शर्तें हैं कि एक तो यह कि हत्ता का माबाद मुस्तकबिल होना चाहिए हत्ता के माकबल की तरफ निस्बत करते हुए, और दूसरी शर्त यह थी कि हत्ता जो है वहां सबबियत या गाया का फायदा दे रहा हो, यानी हत्ता के माकबल को सबब होना चाहिए माबाद के लिए, या हत्ता के माबाद को गाया होना चाहिए माकबल के लिए, फिर हत्ता के बाद अन मुकद्दर होता है। तो यहां ये शर्तें पूरी नहीं, लिहाजा हत्ता नसब नहीं देगा, यानी इस हत्ता के बाद अन मुकद्दर नहीं होगा। हत्ता तसिहु इज़ाफतुहु इलैही, यहां तक कि उसकी तरफ निकाह की निस्बत भी सही है। फकदा यकूनु महल्लल तलाकी, तो इसी तरह ये जुज़े शाइअ जो है तलाक का भी महल होगा। वख्तलफु फिल ज़हरी वल बतनी, और इख्तिलाफ किया है फुकहा ने ज़हर और बतन में, ज़हर यानी कमर और बतन यानी पेट, अगर खावंद कमर की तरफ निस्बत करे तलाक की, औरत को कहे जहरू की तालिकुन तेरी कमर को तलाक है, या बतनों की तालिकुन तेरे पेट को तलाक है, तो क्या इस सूरत में भी तलाक वाकई होगी या नहीं, तो फुकहा का इख्तिलाफ है। बास फरमाते हो जाएगी तलाक और बास फरमाते तलाक नहीं होगी। तो कहते हैं वक्त तलफू फि ज़हरी वल बतनी, और फुकहा ने इख्तिलाफ किया है कमर और पेट में। वल अज़हर, और ज्यादा जाहिर कौल यह है अन्नहु ला यसिहु, की सूरत में तलाक सही नहीं, तलाक नहीं होगी। लिअन्नहु ला युअब्बरु बिहिमा अन जमीअल बदनी, इसलिए क्योंकि इनके साथ पूरे बदन को ताबीर नहीं किया जाता। चलिए बस भाई, बात समझ में आ गई, हल हो गया। चलिए बस भाई, हादा हुआ अल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।